तो तीसरे स्कंद में 12वें अध्याय से हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। तो 12वें अध्याय में सर्वप्रथम चार कुमारों का, रुद्र और मनु और शत्रुपा का जन्म का विस्तृत वर्णन आता है। सृष्टि का निर्माण भगवान की इच्छा से, आरंभ में श्वेत वराह में स्वयंभुव मन्वंतर और नील वराह चक्षुष मन्वंतर में ये दोनों वराह रूप प्रकट होते हैं, और नील वराह का युद्ध हिरण्याक्ष के साथ होता है, और इसकी विस्तृत जानकारी आगे की कथा में दी गई है। सुंदर कथा आती है तीसरे स्कंद में, जब दिति अपने पति कश्यप के साथ भोग करने की इच्छा करती है, तो उस इच्छा को सुनकर कश्यप ऋषि उनको कहते हैं कि अभी समय अनुकूल नहीं, और प्रतिकूल समय में भोग करने का परिणाम बड़ा घातक होगा। लेकिन दीति के मन में भोग करने की बड़ी इच्छा थी, और उनकी चेतावनी सुनने पर भी उनकी उपेक्षा करके वो हट करने लगे कि हम अभी भोग करेंगे। तो शास्त्र में वर्णन आया है कि कोई भी कार्य किया जाए जो कि वैष्णवों के और महान संतों के आदेशों के विपरीत हो, उसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध होता है। तो यहां पर दिति के मन में भोग करने की इच्छा बड़ी तीव्र थी, और अर्जुन भी ये प्रश्न पूछते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से, अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित। हे प्रभु, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम सभी को अपने हृदय के भीतर से खींचती है और हमें पाप कार्य करने पर बाध्य करती है? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअश्न महापापमा विध्येनम इह वैरिनम। वो हमारा सबसे बड़ा वैरी और शत्रु है जिसका नाम है काम वासना, और वो हमें इस प्रकार के पाप कार्य करने पर बाध्य करता है। तो इसलिए दीति अपने आप को रोक नहीं पाई, और जब कश्यप मुनि उनको कह रहे थे कि इस समय शिवजी अपने अनुचरों के साथ भ्रमण करते हैं, और इस समय अगर हम भोग करेंगे तो शिवजी के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा, लेकिन इतना चेतावनी देने पर भी जब दिति मानी नहीं, तो संभोग का परिणाम ये हुआ कि उसके गर्भ में दो भयंकर पुत्र जन्म लेते हैं, और उस समय कार्य होने के पश्चात दिति बहुत पश्चाताप करती है और कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दें, आपके चेतावनी देने पर भी हमने भोग किया, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो इसको देखकर कश्यप ऋषि कहते हैं कि ठीक है, जो भूल तो हुई उसका परिणाम तो होगा कि दो ऐसे पुत्र पैदा होंगे जो देवताओं के शत्रु होंगे, पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बनेंगे, लेकिन आपने वास्तविक हृदय पूर्वक पश्चाताप करने का प्रयास किया, इससे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इन्हीं के कुल में भविष्य में चलकर एक ऐसा वंशज होगा जो भगवान का महान वैष्णव भक्त होगा, और वो थे प्रहलाद महाराज। और एक दूसरा वर दीति मांगती है कि ब्रह्म श्राप से इन दो पुत्रों की हत्या न हो, वैष्णवों के अभिश्राप से इनकी मृत्यु न हो। तो तत्पश्चात वैकुंठ के गाथा का वर्णन आता है। हां, तो उस समय जब दिति के गर्भ में ये दोनों पुत्र प्रकट हो जाते हैं तो दीर्घ काल तक ये बाहर निकलते नहीं और चारों दिशाओं में भयावह अंधकार फैल जाता है। अपशकुन के सारे चिन्ह दिखने लगते हैं और चारों तरफ कोहरा अंधकार छाया हुआ देखकर सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस महाभयंकर अंधकार का कारण क्या है। और तब ब्रह्मा जी एक सुंदर कथा सुनाना आरंभ करते हैं कि इस अंधकार के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। जब चतुष्कुमार एक बार भ्रमण करते हुए स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ के द्वार पर गए तो वैकुंठ के द्वार पर पहुंचकर वैकुंठ का ये लोग भ्रमण करते हैं तो वैकुंठ का वर्णन उस समय आया है कि पारावतान्यव्रत सारस चक्रवाक दत्युह शुक तित्तिरि बर्हिणाम्ब कोलाहलम विरमते चिरमात्र मुच्चै भृंगादिपे हरिकथाम इव गायमाने। विविध प्रकार के पक्षियों का वर्णन आता है, रंग बिरंगे पक्षी जो विविध प्रकार से ध्वनि करते हैं, कई कई कलाओं से युक्त, और ये सब अपने चहल पहल में लगे हैं। लेकिन जैसे ही मधुमक्खी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगती है तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं। भृंगादिपे हरिकथाम इव गायमाने। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वैकुंठ की विशेषता है कि वो द्वेष से विहीन है। और यहां पर एक ही गुण को सम्मान दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा कौन श्रेष्ठ प्रकार से कर पा रहा है। और क्योंकि बाकी सारे पक्षी इस बात को देखते हैं कि मधुमक्खी भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही है और बड़े अच्छे स्वर में कर रही है तो बाकी सभी शांत मुद्रा में उनके सहायक बन जाते हैं। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजात गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन स्तपो सुमनसो बहुमानयन्ति। विविध प्रकार के पुष्पों का वर्णन आता है वैकुंठ में कि अलग अलग रंग के और अलग अलग गंध से सुसज्जित इन पुष्पों का वर्णन और मंदार कुंद कुरब उत्पल पुन्नाग नाग बकुल गंधेर चिते तुलसिका अभरणेन तस्या। तो इन सभी पुष्पों का सुगंध लेकर किसी का भी मन मोहित हो जाए। लेकिन ये सारे पुष्प देखते हैं कि हमारे बीच यहां पर तुलसी महारानी है। गंधेर चिते तुलसिका अभरणेन तस्या। तो तुलसी महारानी के भक्ति और सेवा को देखकर सारे पुष्प उनके सामने झुक जाते हैं। और भले तुलसी महारानी के भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो रूप रंग सजावट सुगंध उस प्रकार नहीं जैसे इन सभी पुष्पों का है, लेकिन क्योंकि तुलसी महारानी ने अपना तन मन धन भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने लगाया, इसलिए क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं तो उस मापदंड के दृष्टिकोण से सारे पुष्प तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। यस्मिन स्तपो सुमनसो बहुमानयन्ति। तुलसी महारानी की दीर्घकालीन भीषण तपस्याओं को सम्मान करते हुए बाकी सारे पुष्प उनके सामने शीश झुका देते हैं। तो इसलिए विस्तृत वर्णन आता है वैकुंठ का और वैकुंठ के वैमानिका सलना चरतान च शश्वत गायंती शमला हरितानि भर्तुर अंतरजले अविकसन सुमाधवी नाम। तो यहां विविध प्रकार के वैकुंठ के निवासी अपने अपने विमानों में भ्रमण करते हैं। तो वैकुंठ का वर्णन आ रहा है कि वैकुंठ में हर निवासी का अपना एक वायु विमान है। वैकुंठ में जाने के लिए एक और प्रेरणा का स्रोत कि छोटी मोटी गाड़ी नहीं पूरा विमान मिलेगा। वैमानिका सललना, और हरेक वैकुंठ के निवासी के अपने एक साथ में एक पार्टनर है, एक पत्नी है। सललना चरितानि शश्वत, और वो निरंतर भगवान का गुणगान कर रहे हैं शश्वत। तो इस प्रकार वैकुंठ वो स्थान है जहां पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को, कथाओं का गुणगान किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसा वैकुंठ जहां पर किसी प्रकार की चिंता न हो, जो हर प्रकार के अशांति, कलह, क्लेश, संघर्ष इत्यादि की भावनाओं से विहीन हो, वहां पर 4-5 वर्षीय बालक, अबोध बालक दिखने में लेकिन है बड़े बुद्धिमान, चारों बालक बिल्कुल अपने बचपन के मासूमियत से युक्त भगवान श्री कृष्ण का के सुंदर धाम में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे वो द्वार पर आते हैं, द्वार पर जय और विजय उनको रोक लेते हैं। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है कि वैकुंठ अर्थात वो जगह जहां पर कोई चिंता नहीं, और कोई विचार भी नहीं कर सकता कि वैकुंठ के द्वार पर कभी कोई समस्या हो। तो जैसे ही द्वार पर आते हैं तो द्वार पर जय और विजय चतुष्कुमारों को रोक लेते हैं। अब देखिए, वैकुंठ भी बड़ा विचित्र स्थान है जहां बिना योग्यता के कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। वैकुंठ कोई देश का बॉर्डर नहीं जहां पर कोई भी घुस जाए और फिर तैनात सैनिकों को रोकना पड़े। जब तक दिव्य आध्यात्मिक शरीर न हो और वैकुंठ विमान आकर न ले जाए, बिना वैकुंठ विमान के कोई एंट्री मार ही नहीं सकता। अब जो हर व्यक्ति जो उसमें प्रवेश करे, वैकुंठ विमान में ही प्रवेश करेगा, तो दो संतरी को खड़ा करके मतलब क्या है? तो प्रश्न उठता है कि दो संतरी खड़े हैं और उनकी सेवा है कि कोई अनाधिकृत प्रवेश न करे, नो अनऑथराइज्ड एंट्री, लेकिन कोई अनऑथराइज्ड एंट्री कभी कर ही नहीं सकता। तो अर्थात ये दोनों के लिए क्या सेवा बची? कुछ नहीं, है ना। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में माला, जप ही करते रहो। हाँ, तो वास्तव में देखा जाए, अगर किसी को कोई सेवा दे दी जाए और वो सेवा में कुछ विशेष कार्य न हो, अभिप्राय न हो, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि हमको ऐसी सेवा दी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। हम यहां खड़े रहे नहीं खड़े रहे, इसका किसी प्रकार से वास्तविकता पर कोई परिणाम नहीं, तो फिर क्या लाभ? लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि वैकुंठ मिथ्या अभिमान से शून्य है, कि ये दोनों को ऐसी सेवा दे दी गई है कि खड़े रहो, लेकिन दोनों खड़े खड़े मस्त हैं, आनंद में हैं, ये नहीं सोच रहे कि लाखों वर्ष बीत गए, कोई द्वार के आसपास भटका भी नहीं। खड़ा खड़ा आदमी सोचेगा, अरे किधर बिठा दिया अपने को। लेकिन वो लोग क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि उनकी इच्छा भगवान श्री विष्णु की इच्छा से एक है, और ये है सेवा का अर्थ। जब हमारी इच्छा भगवान श्री विष्णु की इच्छा से एक हो, उसे कहते हैं सेवा। तो इसलिए यहां पर इनकी इच्छा थी कि जैसे भगवान की इच्छा हो हम वही करेंगे। तो भगवान ने कहा यहां खड़े रहो, ठीक है खड़े हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या हम लोग की यह है कि हम लोग कहने के लिए भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी इच्छा भगवान और वैष्णव समुदाय की इच्छा के साथ कितना एक है, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्योंकि इस इच्छा में तालमेल नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा के साथ उनका इच्छा उनकी इच्छा में पूर्ण समन्वय था, इसलिए किसी प्रकार से उनके हृदय में कोई क्लेश का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो सेवा करने के लिए तैयार थे। तो इसलिए ये इच्छाओं में समन्वय ये बहुत आवश्यक है, और कर्म में और सेवा में यही अंतर पड़ता है। कर्म अर्थात मैं अपने इच्छा अनुसार कार्य करूं, और सेवा अर्थात भगवान की इच्छा अनुसार मैं कार्य करूं। मैं उदाहरण देता हूं हनुमान जी का। हनुमान जी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी की सेना के सबसे बड़े हीरो रहे, लेकिन अगले युग में उसी हनुमान जी को रामचंद्र जी ने कृष्ण के रूप में आकर कह दिया कि झंडे पे खड़े हो जाओ। अब सोचो, जिस व्यक्ति ने संपूर्ण सैन्य बल को समाप्त किया है उसको झंडे पे खड़े रहने की सेवा दे दी, और क्या झंडे पे बैठे बैठे चिल्लाओ जोर जोर से, जब बीच बीच में आक्रमण होगा तो हनुमान जी की सेवा थी, जोर से बोलेंगे हरि बोल, यही सेवा थी। और बाकी हीरो बनेंगे अर्जुन। तो सोचिए, एक तो हनुमान जी का अपना इतना बड़ा गुण था कि वो स्वयं इतना कुछ कर सकते थे, और उनको बिठा दिया झंडे पर, और फिर न केवल वो, उनको देखना पड़ा कि अर्जुन कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने एक बार भी कृष्ण के पास आके बोला नहीं, कह रहे पिछले युग का भूल गए क्या, मैं क्या किया, ये कहां बिठा दिया। लेकिन हनुमान जी जो सेवा दिया उसको पकड़ कर बैठ गए, और उसके सामने सामने हनुमान जी के सामने ही अर्जुन भ्रमित हो गए। अर्जुन भ्रमित हो गए, पहले अध्याय गीता में आपने पढ़ाई है। भ्रमित अर्जुन को देख के हनुमान जी झंडे से नीचे नहीं उतरे और कृष्ण के पास आके बोले नहीं, पहले ही बोला था नए आदमी को मत दो, पिछले युग में मैं कभी बेविल्डर हुआ था क्या, अरे 64 करोड़ सैनिक है, उनको मारने के लिए मुझे केवल अपने शरीर और आकार को बढ़ाना है और सीधा इनके ऊपर लेट जाऊंगा, सब मर जाएंगे। तो हनुमान जी चाहे तो ये बोल सकते थे। तो कई बार भारत में लोगों को लगता है कि हनुमान जी की शक्ति उनके शरीर में है, उनके मसल में है, और सारे जिम्नेजियम और जिम वगैरह में हनुमान जी का फोटो लगा रहे थे। लेकिन हनुमान जी की वास्तविक शक्ति थी कि हनुमान जी नम्र थे, और उनकी नम्रता उनकी शक्ति थी, और भगवान के साथ उनकी इच्छा पूरी जुटी हुई थी। तो इसलिए यहां पर वैकुंठ के द्वार पर जय विजय दोनों खड़े हैं, भगवान की इच्छा के साथ उनकी इच्छा का पूरा समन्वय है, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे भगवान का क्या आदेश होगा। तब उस समय भटकते भटकते आ गए वहां पर चतुष्कुमार। तो जैसे ही चतुष्कुमार वहां पर आए तो जय और विजय उनको देखकर विचार करने लगे कि इनके लिए तो अनुमति नहीं है प्रवेश करने। तो जय और विजय ने केवल अपना कर्तव्य निभाया और चतुष्कुमारों को कह दिया आपको प्रवेश निषेध है। चतुष्कुमार बड़े क्रोधित हो गए और बोले आप लोग कौन हो हमें रोकने वाले। और चतुष्कुमार ने देखते ही देखते बड़े क्रोधावेश में आकर उनको अभिशाप दे दिया कि आप पृथ्वी पर असुर बन के जाओ। और जैसे वो क्रोधावेश में आकर अभिश्राप दे रहे थे, तभी भगवान श्री विष्णु को संकेत प्राप्त हो गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, और विष्णु भागे भागे आए। बोले वैकुंठ के द्वार पर यहां बहुत बड़ा कलह है। तो जैसे ही भगवान श्री विष्णु भागे भागे आते हैं, श्री विष्णु के चरण कमलों में तुलसी महारानी, उसका सुगंध सीधा चतुष्कुमारों के नासिका के अंदर प्रवेश करता है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर जुषह वितरेण संक्षोभ अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो हो। जैसे ये भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का रज का सुगंध उनके हृदय में प्रविष्ट होता है, उनके हृदय के अंदर महान क्रांति मच जाती है और एक दिव्य आनंद की अनुभूति होकर वो अपने ब्रह्मानंद स्तर से उठकर भगवान श्री विष्णु के भक्ति के आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और चतुष्कुमारों के हृदय के परिवर्तन का वर्णन आचार्यगण कई कई टीकाओं में किस प्रकार ज्ञान के स्तर से व्यक्ति भक्ति के स्तर पर भक्त और भक्ति के संपर्क में आकर हो जाता है, इसके विषय में वर्णन करते हैं। दिस इज अ केस स्टडी ऑफ हाउ वन कैन बिकम डिवोटी फ्रॉम ज्ञानी स्टेज। तो इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे ही चतुष्कुमार भगवान श्री विष्णु के सुंदर रूप का वर्णन किए, उनका हृदय आकृष्ट हो गया। और कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री विष्णु अपने साथ में लक्ष्मी जी को भी लेके आए, और उनको लगा कि ये चतुष्कुमार जब क्रोधावेश में है और जोर जोर से शायद चिल्ला रहे होंगे, श्राप दे रहे होंगे, कुछ गाली गलौज चल रहा होगा, तो शायद लक्ष्मी को देख के थोड़ा बिहेव करेंगे, कम से कम ठंडा तो हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको समझा पाऊंगा, इसलिए लक्ष्मी को भी लेके आए। और जैसे ही वो उनके सामने प्रकट होते हैं, तो उनके हृदय परिवर्तन के कारण चतुष्कुमारों के मन में भावना उत्पन्न होती है कि हमने भगवान श्री विष्णु के भक्त जय और विजय के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। और वो दोनों भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें क्षमा करें। और भगवान श्री विष्णु आकर उनकी स्तुति करने लगते हैं, चतुष्कुमारों की स्तुति करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में घी का प्रयोग करे, वो घी का प्रयोग मुझे इतना संतोष नहीं देता जितना स्वादिष्ट पकवान घी में बनाकर जब मेरे ब्राह्मण भक्तों के मुखारविंद के माध्यम से खिलाया जाए, वो मुझे अधिक संतुष्ट करता है। नायम तथाद्मि हविर्विताने च्योतद घृत प्लुतम अदन हुत भून्मुखेन। तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने पर जो घी जाता है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ अगर घी के पकवान बना बनाकर वैष्णवों को खिलाया जाए और वैष्णव संतुष्ट होकर आशीर्वाद दें, तो वो मुझे अधिक संतोष देता है। ये श्लोक सुनकर हमेशा वैष्णव संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को कहा किचन रिलीजन, प्रसाद वितरण। और प्रचुर मात्रा में जब प्रसाद का वितरण हो, लोग अपने आप संतुष्ट हो ही जाते हैं। तो हम लोग साउथ इंडिया यात्रा में थे श्रीरंगम में, और प्रसाद का हम लोग का पूरा काउंटर लग गया था। तब उधर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का गाड़ी आ गया और मुझे आके चिल्लाने लगे, परमिशन कहाँ है तुम लोगों का यहाँ का? तो मैंने कहा, अरे जिसके पास परमिशन है वो अभी बस में है, आएंगे, टाइम लगेगा।
बोले नहीं नहीं आप लोग फालतू की बातें करते हो, बिना परमिशन के लगाया है, उतारो इसको, रोको, हम नहीं आने देंगे। तभी मेरे पास कुछ उत्तर था नहीं, क्योंकि यात्रा कमेटी के जिनके पास सब पेपर वेपर था वो सब बसों के साथ आ रहे थे, लेकिन एक अस्त्र था अपने पास, प्रसाद। तो मूंग दाल पायसम बनाया था गरम गरम, सीधा एक द्रोण भर के उसको दे दिया। बोला ये क्या है? हमने कहा प्रसाद है। बोले ये क्यों दे रहे हो? अरे भाई प्रसाद बांटने के लिए, खाओ, उसमें क्या है। तो सीधा प्रसाद का एक द्रोण पूरा खा गए, उसके बाद बोलते एक और मिलेगा क्या। देखते ही देखते पांच द्रोण पी गए, उसके बाद अपने गाड़ी के अंदर से स्टेनलेस स्टील का डब्बा निकाला, बोला इसको भी भर के दो थोड़ा, घर पे भी लेके जाएंगे। तो गरम प्रसाद ने गरम गुस्से को ठंडा कर दिया। तो कई बार हम देखते हैं कि जब प्रसाद का वितरण होता है, श्रीमद् भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति लम्हे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। प्रसाद के माध्यम से चित्त वृत्ति की शुद्धि होती है। तो इसलिए भगवान श्री विष्णु चतुष्कुमारों को ये सब श्लोक सुनाकर शांत करते हैं, और चतुष्कुमारों को भी पश्चाताप होने लगता है कि शायद हमने समय से पहले ही श्राप दे दिया, थोड़ा भगवान श्री विष्णु के आगमन की प्रतीक्षा करते तो अच्छा होता। ये क्रोध का अपना एक स्वभाव ही है कि क्रोध को व्यक्त और प्रकट करने के बाद फिर पश्चाताप होता है। व्यक्त करते समय ताप होता है, व्यक्त करने के बाद पश्चाताप होता है, इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा कर लो तो अच्छा ही है। खैर जो भी हो, भगवान ने कहा कि जो कुछ हुआ ये मेरी इच्छा से हुआ, और भगवान श्री विष्णु की इच्छा थी कि वैकुंठ में लोग निरंतर उनकी स्तुति करते थे, आव भगत करते थे, पूजा करते रहते थे। तो भगवान श्री विष्णु को भी थोड़ा चेंज की आवश्यकता थी। कभी कभी इस जगत में जब हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में सम्मान नहीं मिलता, तो हमको लगता है कि अगर कुछ लोग ऐसे मिले जो हमें हमेशा सम्मानित करेंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वैकुंठ में निरंतर 24/7 सम्मान प्राप्त कर करके भगवान बोर हो जाते हैं, और उनको लगता है थोड़ा कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां लोग झगड़ा करें, कलह करें, अपमानित करें, गालियां दें, कुछ युद्ध हो, तब मजा आए। तो हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में वैरायटी चाहिए, तो भगवान भी ऐसे ही है। तो इसलिए भगवान कुछ कलह करने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनके ही दो पार्षद जय और विजय को इतनी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा विध्वंस मचाए जिसके कारण भगवान इस धरती पर अवतार लेने के लिए विवश हो जाएं। तो इसलिए जय और विजय जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट होते हैं, उनकी शक्ति भगवान ने वास्तविक रूप से निर्धारित की है। दीज आर डीमंस एम्पावर्ड बाय लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। और इसलिए क्योंकि भगवान श्री विष्णु जो कि अच्युत हैं, उन्होंने इनकी शक्ति को निर्धारित की, भगवान ने किसी को शक्ति देने की इच्छा कर ली, तो जगत की कोई भी सत्ता उस शक्ति को नहीं रोक सकती। इफ यू आर एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड नो पावर कैन स्टॉप। तो इसलिए जय और विजय को इस जगत में भगवान श्री विष्णु ने शक्ति दी। किसके लिए शक्ति दी? विष्णु का विरोध करने की शक्ति। तो इसलिए भगवान की इच्छा रहस्यमय और गोपनीय है, उसको नहीं समझा जा सकता। लॉर्ड विष्णु एम्पावर्ड जय एंड विजय टू अपोज लॉर्ड विष्णु। तो इसलिए जब भगवान किसी को शक्ति देते हैं अपना ही विरोध करने, तो जगत के 33 कोटि देवता मिलकर भी उसको नहीं रोक सकते। तो इसलिए हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि इत्यादि को कोई नहीं रोक सका। उनके विष्णु के विरोध में, उनके विष्णु के ऊपर आक्रमण की प्रणाली में कोई उनको नहीं रोक सका। क्यों? भगवान की इच्छा थी, भगवान ने उनको शक्ति दी थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। अगर भगवान किसी को शक्ति देते हैं तो कोई सत्ता उनको नहीं रोक सकती। भगवान किसी को अपना विरोध करने के लिए इतना एम्पावर कर सकते हैं, तो सोचिए अपने नामों का गुणगान करने के लिए जब किसी को एम्पावर करें, किसी को शक्ति प्रदान करें, वो शक्ति कैसी होगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जब श्रील प्रभुपाद जी को ऐसी शक्ति भगवान ने दी प्रचार करने की, वो प्रचार की शक्ति साक्षात भगवान से प्राप्त हुई है, इसलिए उस शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की शक्ति पूरे विश्व भर में फैल रही है, क्योंकि ये महाप्रभु के द्वारा प्रेरित शक्ति पूरे मिशन में फैल रही है। तो ये आपके और हमारे प्रयास से नहीं हो रहा, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे आलालनाथ में, चौदिकेत सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि, तब महाप्रभु ने इस कीर्तन का वहां पर उद्घाटन किया। और उस कीर्तन को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ऐ रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। आलालनाथ में नित्यानंद प्रभु ने घोषणा कर दी कि भविष्य में चलकर ये महाप्रभु का मिशन विश्व के कोने कोने में फैलेगा, दुनिया के कोने कोने में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन वितरित होगा। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा से पूरे विश्व भर में ये मिशन फैल गया। तो प्रभुपाद जी जब सीताकांत बैनर्जी लेन में थे कलकत्ता में, तो गौड़िया मठ का वहां पर क्लासेस चलता था फर्स्ट फ्लोर पर, और प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे जिनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री, और वो प्रभुपाद जी के घर पर ही ऊपर गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों को हरि नामामृत व्याकरण सिखाते थे। और प्रभुपाद जी कई बार आकर सीढ़ी पर बैठ जाते और जप करते, क्योंकि प्रभुपाद की पत्नी उनको घर पर जप करने नहीं देती। प्रभुपाद के घर में भी कोई समस्या कम नहीं थी, उनकी पत्नी उनको अंदर जप करने मना कर देती, कहती यहां नहीं कर सकते, बाहर जाओ। तो प्रभुपाद जी बेचारे सीढ़ी पे बैठ के जप करते थे। तो एक दिन डोल गोविंद शास्त्री बाहर निकले प्रभुपाद जी के बगल में आके बैठे और बोले कि अभी मैंने अंदर कथा की, पृथ्वी ते आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, कि पूरे विश्व भर में महाप्रभु का मिशन फैलेगा, इस तरह से मैंने घोषणा कर दी। लेकिन मेरे मन में संशय है कि ये पृथ्वी क्या है, केवल उड़ीसा, केवल भारत, पूरी पृथ्वी, ये कैसे फैलने वाला है, कैसे होगा, महाप्रभु का मिशन फैलाना इतना आसान नहीं। तो प्रभुपाद जी जप करते करते गंभीरता पूर्वक सुने, उठे, दो कदम नीचे रखे और दो पग नीचे उतरने के बाद डोल गोविंद शास्त्री को देखकर बोलते हैं, अगर महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, यह कार्य अवश्य होगा। फिर प्रभुपाद जी और दो कदम नीचे उतरे, मुड़े और बोले, भविष्य में कोई शिष्य सरस्वती ठाकुर का, कोई मूर्ख शिष्य उनके चरण कमलों में समर्पित इस कार्य को सिद्ध करेगा। अब डोल गोविंद शास्त्री भी सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, उनको मनी मन लगने लगा, क्या मैं वो तो नहीं। प्रभुपाद फिर दो कदम नीचे उतरे, फिर मुड़े डोल गोविंद शास्त्री को बोले, आप वो नहीं होंगे। तो डोल गोविंद शास्त्री को लगा रहे इनको क्या लगता है ये होंगे क्या, अभय बाबू को क्या लगता है वो कर पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि वो करेंगे। इसलिए जब भगवान की शक्ति प्राप्त होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जब लंदन में गया तब प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने चुनौती दी कि आप लंदन क्यों आए हो, और प्रभुपाद जी ने सीधा मुंह फट उनको आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, उत्तर दिया कि तुम अंग्रेज लोगों ने पिछले 300-400 वर्षों में भारत से इतना लूटपाट मचाया, हीरे मोती सोना चांदी सब चुरा के लेके गए, लेकिन सबसे बहुमूल्य वस्तु भारत की चुराना भूल गए, भगवद गीता उसको मैं देने आया हूं। उसको सुन के वो भी चकरा गया। और तब प्रभुपाद जी की प्रेरणा से पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन के भक्तों ने पूरे विश्व भर में 50 करोड़ भगवद गीता बांट दिए, और ये कोई सामान्य बात नहीं। और श्रीला प्रभुपाद जी की इच्छा से अब विश्व के कोने कोने में कृष्ण भक्ति की लहर फैली है। कौन सोच सकता था कि अफ्रीका में भक्ति होगी, अफ्रीका में प्रचार होगा, कोई सोच सकता है? लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको सिद्ध किया। कौन सोच सकता है चाइना में प्रचार होगा? आज आप जाओ चाइना में गौर नेताय के विग्रह लगे हुए हैं, योगा स्टूडियोज इस्कॉन डिवोटीज ने बांध दिए, मंदिर बांध दिए, प्रसाद वितरण हो रहा है, गौर नेताय को वहां चाइना में भोग लगता है, साथ में चॉपस्टिक्स रखा जाता है। अब कौन से शास्त्र में बताया है ऐसा? लेकिन वहां के भक्त लोग बोलते रहे गौर नेता अपने चाइना में खाएंगे तो चॉपस्टिक से ही खाएंगे। तो इस तरह का विस्तृत विवरण कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। ये शिला प्रभुपाद जी को शक्ति प्राप्त थी इसलिए हो पाया। इसलिए जब भगवान इच्छा करते हैं और भगवान शक्ति देते हैं तो असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो इसलिए जय विजय को भगवान श्री विष्णु ने अपना पार्षद मानकर शक्ति दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान शक्ति देंगे, वो शक्ति भगवान की इच्छा से वास्तव में अप्रमेय होगी, चुनौती से परे होगी। और इसलिए आगे हिरण्याक्ष को दमन करने के लिए भगवान को वराह का रूप धारण करना पड़ा। साक्षात वराह के रूप में आकर हिरण्याक्ष के ऊपर आक्रमण किया और हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच युद्ध छिड़ा, और हिरण्याक्ष को वराहदेव ने कुछ समय के युद्ध के पश्चात समाप्त कर दिया। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने अन्य कार्यों में लग गए, और ब्रह्मा जी का आगे का क्रिएशन का वर्णन आ रहा है स्वयंभू मनु के साम्राज्य के माध्यम से। तो स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां देवहूति आकुति प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो लगभग 4th और 5th स्कंद चलेगा, ये सभी इनके ही चर्चा का वर्णन चलेगा। तो 3rd स्कंद में अब आएगा कपिल देव का वर्णन, 3rd स्कंद से लेकर 33वें अध्याय तक। अकुति का वर्णन आएगा 1st अध्याय में 4th स्कंद के, प्रसूति का फिर दक्ष के माध्यम से, फिर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और फिर प्रियव्रत के पुत्र नाभि ऋषभदेव भरत गए, ये 5वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो स्वयंभू मनु का लगभग अब संपूर्ण 3rd और 4th स्कंद में इनका ही वर्णन आ रहा है। तो अब प्रसंग आता है कि कर्दम मुनि जो कि एक प्रजापति हैं, उनको भगवान ने आदेश दिया कि आप तपस्याएं कीजिए और उन तपस्याओं के माध्यम से भगवान को संतुष्ट कर शुद्ध होकर आप संतान सृजन कीजिए। तो उस समय स्वयंभुव मनु स्वयं अपनी पुत्री के विवाह के विषय में चिंतित होते हैं। तो जब दीर्घकालीन तपस्याओं के पश्चात भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करते हैं तो भगवान श्री विष्णु सीधा कर्दम मुनि के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के पश्चात उनसे कहते हैं आप कोई वरदान मांगिए। और कर्दम मुनि उनसे यही वरदान मांगते हैं कि बस मैं आपकी सेवा में संतान सृजन करूं। और भगवान श्री विष्णु उनको कहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष कर्दम मुनि के सामने देवहूति को लेकर उनके पिता स्वयंभुव मनु और पत्नी शत्रुपा आएंगी, आप उनके पाणि को ग्रहण करना और संतान की उत्पत्ति करना, ये मेरी ओर से सेवा होगी। ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं और तब भगवान श्री विष्णु के आदेशानुसार वहीं पर स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति को लेकर वहां आते हैं। तो वर्णन किया गया है भागवत के इस प्रसंग में कि एक दृष्टिकोण से स्वयंभुव मनु और शत्रुपा पूरे ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट हैं, दे आर द एम्परर्स। जो ऐश्वर्य उनके पास था उस ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन ठीक उस ऐश्वर्य के सामने ये कर्दम मुनि है जो वास्तव में जंगल के अंदर शक्तिहीन समृद्धिहीन अवस्था में है, दरिद्रता के मूर्तिमान स्वरूप है कर्दम मुनि। इतने दरिद्रता से विवश और उनके पास इतनी बड़ी राजकुमारी देवहूति को लेके आ रहे हैं। तो यहां यह वर्णन आ रहा है कि भगवान की इच्छा थी कि देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हो, तो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध पीछे हट जाते हैं, अन्यथा सामान्यतः यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर कर्दम मुनि केवल भगवान की इच्छा पूर्ण करने, स्वयंभुव मनु भगवान की इच्छा पूर्ण करने, ये कार्य संपन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार कर्दम मुनि और देवहूति दोनों का विवाह स्वयंभुव मनु के इच्छा से पूर्ण होता है और विवाह के पश्चात देवहूति कर्दम मुनि की बड़े प्रेम से सेवा करती है। जंगल के बीचों बीच हजारों वर्ष तक कर्दम मुनि अपने तपस्या में लीन है, पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए कोई समय नहीं, देवहूति का भी शरीर देह पूरा कृश तपस्या से पूर्ण शिथिल पड़ जाता है। अब कलयुग में कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के पारिवारिक स्थिति को देखकर भ्रमित हो जाएगा कि यह कैसे हो सकता है। इसलिए महात्माओं के जीवन शैली को देखकर उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो कर्दम मुनि का उदाहरण देखकर किसी को यह न लगे कि चलो हम भी देर रात तक ऑफिस में ही रहे, घर पर नहीं आए, हम कलयुग के कर्दम मुनि बनेंगे। तो कर्दम मुनि जो तपस्या कर रहे थे वो एक अलग स्तर पर था, भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित था और भगवान की इच्छा समझकर वो जो कर रहे थे कर रहे थे। तो इसलिए बहुत समझ तपस्या के पश्चात जब वो बाहर निकले तो देवहूति उनके पास आकर कहती है कि हे प्रभो, अब इतने समय तक आपने तपस्या की, अब आगे हमारे परिवार के विषय में क्या। तो उनको देखकर कर्दम मुनि के हृदय में बहुत प्रसन्नता जागृत हो जाती है और कहते हैं कि क्योंकि आपने दीर्घ काल तक बड़े प्रेम से मेरी सेवा की और इस सेवा करते हुए आपने मुझसे कोई अपेक्षा नहीं की। आपके इस निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूं और ये वरदान देता हूं कि मेरे तपस्याओं का आधा फल मैं आपको दूंगा। और इसलिए दृष्टिम प्रपश्य वितरान अभयान अशोकान, दृष्टिम प्रपश्य, देखिए आपके तपस्याओं और सेवाओं के परिणाम स्वरूप हम आपको क्या दे रहे हैं, अभयदान दे रहे हैं, शोक से मुक्ति दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तपस्या किसने की? कर्दम मुनि ने। आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील और पारंगत विद्वान कौन थे? कर्दम मुनि। देवहूति केवल एक सरल गृहिणी थी जो न कर्दम मुनि के स्तर की तपस्या कर सकती थी, न कर्दम मुनि के स्तर का ज्ञान उनके अंदर था, न वो शास्त्र या संस्कृत के व्याकरण में इतनी बड़ी विदुषी थी, लेकिन उनके मन में एक ही भावना थी कि मैं किस प्रकार अपने पति कर्दम मुनि की सेवा कर सकूं। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यह बहुत बड़ा अंतर है कि ज्ञान और योग मार्ग में साधक को अपना ही प्रयास, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, लेकिन भक्ति के मार्ग में साधकों के लिए बड़ी आशाजनक बात क्या है? सबसे आशाजनक सिद्धांत भक्ति के मार्ग में भक्तों के लिए यह है कि चाहे साधक के निजी अयोग्यताएं और दुर्गुण अवगुण कमियां चाहे कितनी भी क्यों न हो, लेकिन वो अगर योग्यता प्राप्त स्वामी के निष्कपट सेवा करे तो ऐसे जीवन पर्यंत सर्वस्व निस्वार्थ सेवा भाव के परिणाम स्वरूप ऐसे सेवक के हृदय में स्वामी के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप गोलोक और वैकुंठ के द्वार का हर पुरस्कार चरणों में आके चूमने लगता है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में भक्त की एक ही चिंता होनी चाहिए, उचित मार्ग को ढूंढकर उचित स्वामी का आश्रय लेकर उचित वैष्णव समुदाय में अगर हम सेवा करेंगे तो हमारी प्रगति का मापदंड अपना प्रयास नहीं, वैष्णवों की शक्ति और आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता का परिणाम होगा। तो इसलिए यहां पर दृष्टिम प्रपश्य वितरामी अभयान अशोकान, कर्दम मुनि कहते हैं देवहूति को, आपको मैं अभयदान दे रहा हूं, आपको शोक से मुक्त कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरी सेवा की। और उस निष्कलंक निष्कपट निस्वार्थ सेवा भाव का परिणाम है कि आपका हृदय शुद्ध कृष्ण भक्तिमय भाव से उजागर हो जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति का वितरण किए तो उनकी सेवा में जो लोग लगे थे वो कोई संस्कृत के विद्वान नहीं थे। 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और जो अमेरिका के युवक युवती जुड़ गए वो सब 20-22 साल के थे। आप सोचिए 1966 में 1950 बॉर्न व्यक्ति 16 साल का है, 1970 में 20 साल का है, तो ऐसे 20-22-25 साल के नौजवान जो युवतियां जुड़ गई प्रभुपाद से, लेकिन जो इतिहास में आज तक कभी ऐसी क्रांति नहीं मची, जो भारत के बड़े बड़े संस्कृत के पंडित विद्वान व्याकरण में प्रवीण लोग एकजुट होकर विश्व के कोने कोने में जो सनातन धर्म का झंडा नहीं गाड़ पाए, वो गांजा अफीम दारू अवैध स्त्री संग और परपुरुष तरंग इत्यादि करते हुए नौजवान नवयुवतियों ने 10 वर्ष के अंतर्गत कर डाला। विश्व के कोने कोने में कृष्ण भक्ति की लहर फैलाई और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को एक वैश्विक रूप प्रदान किया। इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके जब भारत में आए, लोग अचरज में पड़ गए, क्या है ये, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। प्रभुपाद जी जुहू बीच पर थे और वो कई अपने मित्रों के साथ बैठे थे, लाइफ मेंबर्स के साथ। तभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो बिरला बाबू के रिश्ते में थे, ब्रिज रतन मोहता जी, वो प्रवेश किए। प्रभुपाद जी ने उनका स्वागत किया और उनका परिचय दिया। ये मोहता जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इसको सुनकर मोहता जी बोले, अरे प्रभुपाद जी, असली बिजनेसमैन तो आप हो। 40 रुपए अमेरिका लेके गए, अभी 40 करोड़ की संपत्ति पूरे विश्व में, असली बिजनेसमैन आप हो। प्रभुपाद ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ। तो मोहता जी घबरा गए, बोले अभी नहीं, भविष्य में देखेंगे। तो प्रभुपाद जी के पास जब गिरिराज महाराज आ गए, तो गिरिराज महाराज के पिताजी आके प्रभुपाद को बोले, हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, जितना रकम चाहिए भर लो, बेटा लौटा दो। प्रभुपाद जी को देखकर गिरिराज महाराज बोले, आप चेक को भी रखो और मुझे भी रख लो। प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं भाई, आपको हम क्यों रखेंगे, अगर आपको अपनी इच्छा से रहना तो रहो। तो उनके माता पिता और प्रयास किए और एक साइकेट्रिस्ट को लेके आ गए, और वो साइकेट्रिस्ट पकड़ पकड़ के उनको पूछ रही है, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में, क्या क्लेश है, कौन परेशान किया, फैमिली के साथ प्रॉब्लम है क्या, ये वो। हर प्रश्न का उत्तर गिरिराज महाराज गीता के श्लोक से दिए, और साइकेट्रिस्ट ने अमेरिका के अपने इतिहास में कभी संस्कृत का श्लोक सुना ही नहीं था। वो भी सोच रही, पता नहीं बोल क्या रहा है उटपटंग। आधे घंटे में बाहर आई और माता पिता को बोली, अपने बेटे को आप ही संभालो, आधा घंटा और मैं रहूंगी, मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगी। और बोली, योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो प्रभुपाद जी को आके गिरिराज महाराज बोले, कैसे, वो साइकेट्रिस्ट ने कहा। तो प्रभुपाद बड़े खुश हो गए। प्रभुपाद बोले, इवन साइकेट्रिस्ट है सर्टिफाइड दैट आवर गिरिराज इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो इसलिए सोचिए कि आज जो विश्व के कोने कोने में प्रचार कार्य फैला है, वो उन 11 वर्षों में उन लोगों ने फैलाया जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, ना वो वैदिक सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म के आधार पर अपना जीवन व्यतीत किए थे। तो इसलिए भक्ति में शक्ति प्राप्त करने के लिए कलाओं की इतनी आवश्यकता नहीं जितने आत्मसमर्पण की। तो इस दृश्य में देवहूति के आत्मसमर्पण की स्तुति हो रही है। देवहूति ने अपनी इच्छाओं को कर्दम मुनि के तपस्या के अग्नि में भस्मीभूत कर दिया, और उस यज्ञ के माध्यम से कर्दम मुनि ने उनको ऐसी शक्ति प्रदान की कि बड़े बड़े तपस्वी गण भी भीषण तपस्याओं से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि दीर्घकालीन अनशन और व्रत करने पर शक्ति प्राप्त होती है। हां, थोड़ी बहुत शक्ति अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन अपनी इच्छाओं को भस्मीभूत करके भगवान और वैष्णवों की इच्छाओं को संतुष्ट करने के उस यज्ञ में सर्वाधिक श्रेष्ठतम शक्ति प्राप्त होती है, और वो यहां पर देवहूति ने अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर दिया। हाँ, प्रहलाद आनंद महाराज बताते थे, जब वो प्रथम बार इस्कॉन मंदिर में जैसे ही प्रवेश किए, ब्राह्मण दीक्षा लेकर, तो जो पुजारी था वो उसी दिन भाग रहा था वो मंदिर से, और पुजारी भागते भागते बोला अभी तुम पुजारी का काम करो। वो महाराज बोले यार पुजारी का काम क्या होता है? बोले ये अगरबत्ती लो घुमाओ, फिर ये दीप लो घुमाओ, थोड़ा बहुत बता के वो गायब हो गया। ये बताना भूल गया कितना देर करो, और ये अगरबत्ती लेकर एक घंटा घुमा रहे, फिर दीप को लिए उसको भी एक घंटा घुमा रहे, टोटल आरती 3 घंटा चला। फिर सोचे कि 6 आरती करनी है तो 18 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद को पत्र लिखा कि भाई ये आरती कितने समय की होती है। तब प्रभुपाद जी ने उनको समझाया नहीं नहीं टोटल 25 मिनट में खत्म करना है। तो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए जन्म से ही संस्कार प्राप्त लोग नहीं थे, उनके अंदर कई कमियां थीं, लेकिन वो सारी कमियां केवल प्रभुपाद जी के इच्छा के साथ तालमेल और समन्वय होने के कारण सब पूर्ण हो गई। एक और भक्त प्रभुपाद को पत्र लिखे कि मैं अभी ड्यूटी वर्शिप कर रहा हूं, 3 विग्रह हैं उनकी मैं सेवा कर रहा हूं और बहुत आनंद आ रहा है सेवा करते करते, लेकिन एक ही प्रश्न है ये 3 है कौन? तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कहते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मतलब 6 महीने से वर्शिप चल रहा है उनको पता ही नहीं कौन है, क्योंकि कोई बुक नहीं उस समय, न वेबसाइट है, न लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो किस परिस्थिति में इस्कॉन का प्रचार प्रभुपाद जी ने विश्व के कोने कोने में किया ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि महान वैष्णवों के इच्छानुसार जब हम कार्य करते हैं, तो यहां पर देवहूति को कितनी शक्ति प्राप्त हुई और तब जाकर कपिल देव का जन्म हुआ, और यहां पर कपिल देव के जन्म के पश्चात कर्दम मुनि वहां से निकलने के लिए तैयार हैं, और कर्दम मुनि कपिल देव जी को आशीर्वाद देकर वहां से निकल पड़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान घर में जन्म लिए हैं कपिल देव, घर में जन्म लिए हुए भगवान को छोड़कर कर्दम मुनि जंगल में निकले हैं भगवान को ढूंढने, ये क्या चल रहा है, ये कौन सी विडंबना है? तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं तात्पर्य में कि कर्दम मुनि वास्तव में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि चाहे घर पर भी भगवान जन्म क्यों न ले, लेकिन शास्त्र अनुसार एक समय के पश्चात भगवान को खोजने के लिए हर प्रकार के भौतिक और घरेलू श्रृंखलाओं को काटकर निकलना आवश्यक है, इसलिए वो निकल गए। और तब कपिल देव के सामने माता देवहूति बैठी, और कर्दम मुनि से उस समय माता देवहूति कहती है, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृतोपि सह, साहम भगवता नूनम वंचितो माया दृढ़म यत्तत विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षय बंधनात्। कहती हैं कि अगर किसी का कर्म धर्म में और धर्म निष्काम सेवा भाव में भक्ति में परिणित नहीं होता तो वो बेकार है। और फिर देवहूति कहती है, माता देवहूति, सायं भगवता नूनम वंचितम माया दृढ़म, माया के प्रपंच और श्रृंखलाओं में मैं फंस गई कि मुझे आप जैसे अपने स्वयंभू मनु जैसे पिता मिले, कर्दम मुनि जैसे पति मिले, हर प्रकार की आध्यात्मिक व्यवस्था मिली, लेकिन इतनी उपलब्धियों को प्राप्त करके भी मैं भगवत भजन से वंचित रह गई। तो प्रभुपाद कहते हैं सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है? हाँ, जिसको आध्यात्मिक प्रगति के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता वो दुर्भाग्यशाली है। लेकिन अधिकतम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो हर प्रकार के आध्यात्मिक प्रगति के परिवेश प्राप्त करने के बाद उसका लाभ नहीं लेता। रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो कैलास्य उपवने वन्यो मंदाकिन्यो मदोत्कटो वारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोजनो स्त्रीजने अनुगायद्भिर चेरतो पुष्पिते वने अंत प्रविश्य गंगायाम अंभोज वनराजनी चिक्रीडतो युवतिभिर करेणुभि। जब नलकुवर और मणिग्रीव दोनों अपने अय्याशी के पूरी तरह मदमस्त अवस्था में नारद मुनि के सामने आकर उनका ही उपहास करते हैं, तो उनके निर्लज अवस्था को देखकर नारद मुनि करुणावश उनको अभिशाप कर देते हैं कि आप इतने निर्लज हो, बिना वस्त्र धारण किए हो, तो भविष्य में चलकर वस्त्र पहनने की आपकी कोई अवस्था ही न हो। वस्त्र पहनने का कष्ट क्यों करो, पेड़ बन जाओ। तो इस प्रकार नारद मुनि के अभिशाप के परिणाम स्वरूप वो पेड़ बने और तब जाकर दामोदर भगवान ने उनका उद्धार किया। तो इसलिए भक्तों का और वैष्णवों का सत्संग प्राप्त होना ये सबसे बड़े सौभाग्य का चिन्ह है। और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होने के बाद अगर उसका हम लाभ न लें, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का चिन्ह है कि नहीं? तो वृंदावन में प्रभुपाद जी थे और उस समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनके साथ वृंदावन में बैठे थे और वो शिष्य प्रभुपाद जी को कहने लगे, प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठकर कोई व्यक्ति मांसाहार करेगा तो अगले जीवन में क्या बनेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, अगले जीवन में वो सुअर बनेगा। तो बोले, प्रभुपाद जी अगर वृंदावन में रहकर कोई अवैध स्त्री संग करेगा तो क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा, वो कुत्ता बनेगा वृंदावन में। फिर वो भक्त पूछता, प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ के यमुना के तट पे कोई गांजा फूकेगा तो क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, अगले जन्म में वो सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी बनेगा। फिर प्रभुपाद कहने लगे, अरे वृंदावन में बैठ के तुम्हारा मन यहीं तक जा रहा है क्या? वृंदावन में बैठे हो लेकिन मन कहां है? तो इसलिए सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन इतना सत्संग प्राप्त करके हम कर क्या रहे हैं? तो ये हम सभी को अपने जीवन में विचार करना है कि कैसे हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो अब माता देवहूति कपिल देव के सामने बैठी और वो प्रश्न पूछती हैं, तो ये माता देवहूति के प्रश्नों की सूची यहाँ पर वर्णन है। वास्तव में ये है लगभग 25वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक 8 अध्याय भर के कपिल देव की कथाएं, लेकिन आपको एक संक्षिप्त रूप में अगर बताना हो, देर आर 7 क्वेश्चंस इन दिस एंटायर कन्वर्सेशन इन कपिल देव देवहूति कन्वर्सेशन। पहला, मैं माया के द्वारा भ्रमित हूं, कृपा करके हमारी माया को दूर कीजिए। तो इसमें कपिल देव जी आध्यात्मिक योग की बात करते हैं। दूसरा, आपको प्राप्त करने के लिए भक्ति किस तरह पालन किया जाए, और ये तीन गुणों से परे भक्ति का वर्णन करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछती हैं, ज्ञान के लिए मार्ग कौन कौन से हैं? तो कपिल देव जी सांख्य का वर्णन करते हैं, प्रकृति पुरुष कार्य सृष्टि इत्यादि। चौथा, योग का वर्णन कीजिए, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। फिर पूछती हैं, भक्ति का विस्तृत वर्णन कीजिए, और तब भक्ति के अलग अलग अंग, शुद्ध भक्ति और अपराधों का वर्णन, काल का वर्णन कीजिए, और काल का वर्णन करते हैं, जन्म और मृत्यु का वर्णन कीजिए, जीव किस प्रकार अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीरों में जन्म लेता है इसका विस्तृत वर्णन 30, 31वें और 32वें अध्याय में है, और जीव माँ के गर्भ में जब रहकर किस प्रकार प्रार्थनाएं करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभो इतना कष्ट इतनी यातनाएं मैं झेल रहा हूं, बाहर निकलने के पश्चात मैं अवश्य आपकी भगवत भक्ति करूंगा। ये जीव के भगवान से प्रार्थनाएं मां के गर्भ में, इसका वर्णन यहां पर आया है। तत्पश्चात सकाम कर्म का किस प्रकार निंदा और भक्ति योग किस तरह उससे श्रेष्ठ है, ये पूरा वर्णन आया है ये 7 अध्याय ये 7 प्रश्नों में। इस प्रकार ये कपिल देवहूति का संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इसमें एक प्रमुख श्लोक कहते हैं कपिल देव जी, भक्ति करने का परिणाम क्या होता है। कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्र शांत साधवो साधु भूषणम। माया के साथ युद्ध करते समय मायावी तत्वों को विनाश करके भक्ति के तत्व को हृदय के भीतर बलिष्ठ करने के प्रयास से भगवान संतुष्ट होकर ऐसे भक्त पर आशीर्वाद देने के चिन्ह परिलक्षित होते हैं जब ऐसे भक्त के हृदय में विविध प्रकार के दैवी गुण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भगवत भजन करते हुए साधक के मन में प्रश्न उठता है, मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं अथवा नहीं, इसके चिन्ह क्या है, इसका प्रमाण क्या है। हां, भक्ति करते हुए 10 साल 20 साल 30 साल हो गए, लेकिन भगवत भक्ति के प्रगति के मुख्य चिन्ह क्या हैं? इस भक्ति के यात्रा के अलग अलग प्रगति के मापदंड क्या हैं? इसको समझना आवश्यक है। तो इस श्लोक में भक्ति के प्रगति के मापदंड बता दिए गए हैं, और मुख्य रूप से मापदंड बताते हैं दैवी गुणों की उत्पत्ति, और उसमें सबसे श्रेष्ठ तितिक्षव टॉलरेंस। क्या आपकी सहनशीलता बढ़ रही है अथवा नहीं? अगर आप भगवत भजन में आगे बढ़ रहे हो, सहनशीलता बढ़नी चाहिए। कारुणिका, दूसरों के प्रति कृपा की भावना, करुणा की भावना बढ़ रही है कि नहीं? सुहृद सर्वदेहिनाम, सभी जीवों के प्रति सौहार्द का भाव। अजात शत्र, दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव नष्ट होना। शांत, शांति की भावना। साधव, साधु भूषणम। तो ये अंतिम शब्द कपिल देव ने जो प्रयोग किया है, इसके ऊपर मैं कुछ समय बिताना चाहता हूं। साधु भूषणम, भूषणम का अर्थ है ऑर्नमेंट, भूषणम का अर्थ है पुरस्कार। तो जब सरकार किसी योद्धा को युद्ध भूमि में सफलतापूर्वक युद्ध करते हुए विपक्षी दल को पराजित करने के पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर उनको कोई वीरता पुरस्कार दे, उसको कहते हैं भूषणम। तो युद्ध में युद्ध करते हुए योद्धा को सरकार पराक्रम के चिन्ह से पुरस्कृत करती है और उसको कहते हैं भूषणम। तो इसलिए जब व्यक्ति कुछ पराक्रम का प्रदर्शन करे, सरकार प्रसन्न होती है। एक हमारे भक्त इस्कॉन में आने से पहले आर्मी में थे, अमेरिका में जबरदस्ती उनको कॉलेज के बाद आर्मी में डाल दिया और उनको भेज दिया वियतनाम वॉर में। तो बोले, यार मेरे को तो वियतनाम वॉर में जाने की कोई इच्छा ही नहीं थी, और ना मुझे हाथ में बंदूक पकड़ने का, बंदूक पकड़ता था मेरे पैर कांपते थे, लेकिन जबरदस्ती भेज दिया। तो जैसे वो युद्ध भूमि में एक दिन उतरे वियतनाम में, सामने से गोलियां चली, गोलियों की आवाज सुनकर ये कांपने लगे, बोले छोड़ो और भागो। लेकिन जैसे गोली चली, उनके बगल में उनके मित्र चल रहे थे, उनके मित्र को गोली लगी और मित्र नीचे गिर गए लहूलुहान होकर। अब ये घबरा गए, बोले अगला गोली मुझे लगेगा। तुरंत मित्र के मृत शरीर को उठाया, अपने सामने रखा कवच बनाकर, बोला अगला जो भी लगेगा इसी को लगेगा। ये तो पहले परलोक सिधार गए, दो गोली और खाए तो मेरी सेवा में अच्छा ही होगा। उसका शरीर पकड़कर लेके आए अपना बचाव करते हुए, अपने कैंप में पहुंच गए। पहुंचा तो मालूम पड़ा वो दोस्त मरा नहीं, जिंदा है। और सरकार ने इस भक्त को, मित्र को, जान पे खेलकर जान बचाने के लिए वीरता पुरस्कार दे दिया। बोले क्या पराक्रमी है ये, देखो। और ये बोले वास्तव में मैं कैसे बचा के लाया मैं ही जानता हूं, लेकिन मैं भी इतना लज्जा शून्य था कि बताया नहीं कि असली असली स्टोरी क्या था। तो हो सकता है इस जगत के पराक्रम को सरकार ठीक तरह ना समझ पाए और गलत व्यक्ति को गलत पुरस्कार भी दे दे, लेकिन आज तक इतिहास में एक व्यक्ति भी कपट करके, काम चोरी करके, आनाकानी करके, आवश्यक तपस्याओं में डिस्काउंट मार के भगवत धाम पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बैड न्यूज। तो इसलिए गोलोक जाना हो तो इसके लिए 100% खरा उतरना पड़ता है, घिस घिस कर, पसीना बहाकर, भगवान के संकीर्तन आंदोलन के यज्ञ में पूरी तरह अपने आप को आहुति देकर, पूर्णतः भगवान का और भगवान के वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये बात वर्णन किया गया है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे भगवत भजन जब करेंगे, अजात शत्र शांत साधवो साधु भूषणम, तब जाके ऐसे वैष्णव गुण हमें पुरस्कार स्वरूप दान में दिए जाएंगे। दो गोली चलाकर योद्धा सरकार से डिमांड नहीं कर सकता, पुरस्कार देते हो क्या? हो गया, मैं 10 गोली चलाया मैंने। जब सरकार देखेगी कि इन्होंने कुछ पराक्रम किया है, और पराक्रम की परिभाषा सरकार देगी, आप अपना रिपोर्ट नहीं भेज सकते मैंने बहुत बड़ा पराक्रम किया, पता है क्या आपको? तो हम भगवान के सामने आके नहीं कह सकते प्रभु मैं बहुत साधना कर रहा हूं, 16 माला कर रहा हूं हर रोज, बहुत अच्छी तरह कर रहा हूं, केवल 2-4 माला में सोता हूं, ज्यादा नहीं, बाकी सब चल रहा है। हाँ, जब भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं पांडवों का विध्वंस कर दूंगा 5 बाणों से, कृष्ण घबराकर आए पांडवों के कैंप में अर्जुन को जगाने, अर्जुन सोए थे और अर्जुन सोते सोते श्वास ले रहे थे और सोते समय भगवान का नाम ले रहे थे, ये अर्जुन का पावर था। अर्जुन भगवान के स्मरण में इतना लीन रहते कि सोते हुए भी उनके श्वास से कृष्ण का नाम निकलता और हम लोग नाम लेते लेते सो जाते। तो इसलिए आज दामोदर लीला का अंतिम दिन है तो यशोदा माई ने अपने हाथ से बांधा दामोदर को, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, श्रम अर्थात कसरत प्रयास, परि अर्थात हर दृष्टि से, एक प्रयास विफल हुआ तो दूसरा, दूसरा विफल हुआ तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, निरंतर प्रयत्नशील रहना, परिश्रमम, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्व बंधने स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कवर सृज, दृष्ट्वा परिश्रम। तो ये परिश्रम भगवान देखते हैं कि कितना कर्मठ प्रयास किया है, तब जाकर भगवान शनै शनै दैवी गुण हमारे जीवन में उतरने देते हैं। इसलिए इसको यहां पर कहा गया है अजात शत्र शांत साधवो साधु भूषणम। आगे देवहूति माता भगवान कपिल देव के चरणों में प्रार्थनाएं व्यक्त करती हैं और उसमें दो प्रार्थनाएं बहुत प्रमुख हैं। यन नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यह प्रवरणात् श्रवणात् अपि क्वचित् श्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनः किं भगवन्नु दर्शनात्। देवहूति जी कहती हैं, प्रभो अगर किसी ने आपके चरणों का आश्रय लिया हो तो चाहे वो कुत्तों को खाने वाला निकृष्ट परिवार में भी क्यों न जन्मा हो, ऐसा व्यक्ति भक्ति के अग्नि में शुद्ध होकर महान वैदिक यज्ञ करने के लिए सुयोग्य पात्र माना जाता है। अहो बत शपचो गरियान य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर किसी के मुख पर आपका नाम आ गया, मतलब समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में उसने हर प्रकार के भीषण तपस्याएं की हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उसने सिद्ध किया है अपने पूर्व जन्मों के कारण। क्षणे क्षणे कर तुमी हरिदास कहे प्रभु न छुया मुरे मुई नीच अस्पृश्य परम पामुरे। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु मुझे मत स्पर्श कीजिए, मैं नीच हूं, अस्पृश्य हूं, परम पामर हूं। तो महाप्रभु उसको देखकर कहते हैं, क्षणे क्षणे कर तुमी सर्वतीर्थिर स्नान क्षणे क्षणे कर तुम्हें यज्ञ तपोदान। नहीं हरिदास, आप तो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जिन्होंने हर प्रकार के तपस्या पूर्ण की, हर यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान संपन्न किया, चार वेदों का अध्ययन किया है, हर पावन तीर्थ स्थल में आपने स्नान किया है, हर प्रकार का पावन कार्य वेदों के अनुसार आपने पूर्ण किया है और आपके दिव्य शरीर को स्पर्श करने मात्र से मैं अपने आप को पवित्र मानता हूं। तो इसलिए जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। इस प्रकार यहां पर देवहूति माता भगवान के नामों की महिमा का वर्णन करती हैं और बतलाती हैं कि कैसे भगवान के नाम की शक्ति का प्रभाव है। कपिल देव जी वहां से निकलकर गंगा सागर पे पहुंचते हैं और गंगा सागर में जाने के पश्चात यहाँ पर देवहूति अपना शरीर त्याग करती हैं और वास्तव में अपने जीवन को परिपूर्ण करती हैं। इस प्रकार ये तीसरा स्कंद समाप्त होता है। तो अब तृतीय स्कंद के देवहूति कपिल संवाद में एक सेक्शन में तीन गुणों में भक्ति किस प्रकार होती है इसका वर्णन आया है। क्योंकि जब व्यक्ति पूरे विस्मरण में होता है तो एक झटके में उसकी स्मरण शक्ति प्राप्त नहीं होती, धीरे धीरे हिज मेमोरी कम्स बैक स्लोली। तो इसलिए भक्ति का अर्थ है स्मरण दिलाना, लेकिन एक झटके में व्यक्ति को पूर्णतः भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। तो इसलिए भक्ति तीन गुणों में वर्णन किया गया है। कपिल देव देवहूति को कहते हैं, भक्ति कैन बी इन तमोगुण, इन रजोगुण, इन सत्वगुण। तो ये तीन गुणों में भक्ति की जा सकती है इसका वर्णन आता है। और तत्पश्चात चौथे स्कंद का विषय है कि भक्ति तमोगुण में किस प्रकार की जाती है उसकी एक कथा, दक्ष प्रजापति का उदाहरण। भक्ति रजोगुण में किस प्रकार की जाती है उसका उदाहरण ध्रुव महाराज, और सत्वगुण की भक्ति का उदाहरण है हमारे पृथु महाराज। तो इस प्रकार चौथे स्कंद में ये तीन मुख्य विषय भक्ति तीन गुणों में वर्णन उसके आधार पर। तो अब वापस ये चार्ट आप देख रहे हो, तो इसमें तीसरा स्कंद समाप्त होने के पश्चात अब चौथे स्कंद में ये वर्णन आ रहा है और देवहूति के जो पार्षद हैं उसका यहां पर वर्णन हम देखते हैं। इसको कहते हैं जीनियोलॉजिकल लाइन ऑफ देवहूति। तो देवहूति और कर्दम मुनि, उनके 9 पुत्रियां और 1 पुत्र कपिल, 9 पुत्रियों का विवाह कैसे कैसे हुआ उसका वर्णन है। ये 9 पुत्रियां अलग अलग ऋषि से जन्म लिए। जैसे आप लोग कभी भी पूजा पाठ करवाते हो तो कहते हैं ना आपका गोत्र क्या है। तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में डार्विन को मानने वाले लोग डार्विन के पुजारी, तो वो ये बात को नहीं समझ सकते, है ना। हमारे माइकल क्रीमो, द्रुतकर्मा प्रभु, जो डार्विन थ्योरी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो कह रहे थे अगर जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हुए कोई पूछेगा कि क्या गोत्र है तो वैज्ञानिक बोलेगा वानर गोत्र, वानर से हम आए हैं। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा कि साइंटिस्ट आर सेइंग वी केम फ्रॉम मंकीज, प्रभुपाद से दे स्टिल रिमेन मंकी। एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट प्रभुपाद को मिले और वो प्रभुपाद को पूछने लगे, प्रभुपाद उनको पूछने लगे अच्छा हु आर यू, उन्होंने अपना नाम बताया, आई एम सो एंड सो, आई एम डॉक्टर सो एंड सो, आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट। प्रभुपाद ने कहा व्हाट डू यू डू, वो बोला आई स्टडी प्रिमिटिव पीपल। फिर उन्होंने प्रभुपाद को पूछा व्हाट इज योर नेम, प्रभुपाद ने बोला एसी भक्तिवेदांत स्वामी। बोले व्हाट डू यू डू, प्रभुपाद बोला आई स्टडी एडवांस पीपल। फिर प्रभुपाद बोले अरे तुम ऐसे ऐसे स्टडी करके क्या पाने वाले हो। तो वास्तव में ये जो आप देख रहे हो ये सब ऋषि मुनि की संख्या है और वहां से सब प्रकट हुए हैं। और इसलिए भारत में अधिकांश लोग डार्विन थियरी वगैरह बोल दे भले, लेकिन विश्वास बहुत कम लोगों को है। डार्विन का पेपर देने के पहले भी गणेश जी की पूजा करके जाएगा। तो इसलिए यहां पर मैं कहता हूं हमेशा कि भारत में बोनाफाइड एथिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना यहां पर आध्यात्मिक परिवेश का प्रभाव है कि आधे से ज्यादा लोगों का तो कृष्ण और राम से संबंधित नाम ही है, सबके नाम में घुस गए भगवान। डायरेक्टरी पढ़ते जाओ तो लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण विष्णु ये वो सब चलता चला जाएगा। मंदिर के बगल में होटल है सुदामा पैलेस बियर बार, बीड़ी फूकने जाओ तो गणेश बीड़ी। तो भगवान का नाम कहां नहीं है भारत में। तो इसलिए इसका स्रोत क्या है ये देखिए, सारे जब भागवत में वर्णन है सबका विवाह हुआ तो उनके पुत्र ऐसे ऐसे हुए और तब जाकर सृष्टि आगे बढ़ी। तो यहां वर्णन आ रहा है कि देवहूति के बाद जो दूसरी पुत्री प्रसूति वो दक्ष को दी गई और दक्ष के 16 पुत्रियां हुई, 13 पुत्रियों को दिया गया धर्म को, उनमें से नर नारायण भी प्रकट हुए। स्वाहा को दिया गया अग्नि से, उनके 3 पुत्र हुए, स्वधा और पितरियों में से 2 पुत्र हुए। और ये हो गए 13, 14, 15 और 16वें पुत्री का नाम था सती, जिनका विवाह हुआ शिवजी से। और सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं कि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। तो अब मैत्रेय ऋषि भी बहुत परीक्षा ले रहे हैं कि विदुर जी कथा सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रवचन करने वाले प्रवक्ता को हमेशा चिंता लेती है कि ये श्रोता है कि सोता है। बैठे तो हैं और घड़ी घड़ी सर भी हिल रहा है, लेकिन क्या ध्यान है कि नहीं। तो इसलिए बीच बीच में प्रवचन करते करते वो एक परीक्षा ले लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट। तो कहते कहते कह दिया ये 13 पुत्रियां इनको दी, 14वीं ये, 15वां ये और 16वां सती, उनका कोई पुत्र नहीं था। बोले अरे रुको रुको रुको, क्यों पुत्र क्यों नहीं था, उनका संतान क्यों नहीं था। तो मैत्री बोले बहुत बढ़िया सुन रहे हो। तो फिर कथा सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें सारे देवतागण उपस्थित थे। ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। हम लोग तो 6000 लोगों का यात्रा करते करते पसीना निकल गया है कि नहीं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज जाके थोड़ा हवा खा रहे हैं जीईवी में 3 दिन कथा में। बोले आप लोगों को पता नहीं वहां कथा चल रही थी, लेकिन दिवाली के दिन और बाकी दिन ये लोग क्या क्या सतर्क में थे कि यहां से फटाका फूटेगा, वहां से फूटेगा, इधर उधर सब वॉकी टॉकी लेके लोग खड़े थे कि अलग अलग रॉकेट आ रहे थे वो कहां गिरने वाला है, पंडाल के ऊपर गिर रहा है, पंडाल के अंदर गिर रहा है। तो इसलिए 6000 लोगों का यात्रा करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहां सोचो 33 कोटि देवता एकत्रित हुए हैं और इस सभा में प्रवेश करते हैं दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रवेश करते हैं सारे देवतागण उठ जाते हैं। एक अभी हाल ही में एक आईपीएस ऑफिसर मुझसे बात कर रहे थे और बोले, वो अभी रिटायर हो गए, वो बोले लेकिन जब हम ड्यूटी पे रहते हैं और जब एंट्री मारते हैं ऑफिस में सब लोग ऐसा खड़े होते हैं, उससे जो ईगो चढ़ता है उसका वर्णन करना मुश्किल है। लगता है हम क्या हैं, है कि नहीं। और मैंने कई एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर यहां पे आए थे जीवी, बहुत बड़े बहुत फेमस आईपीएस वाले, मैं उनको टूर दे रहा हूं, टूर देते देते मेरे को ही ऑर्डर दे रहे, यहां पे ये करो वहां पे वो करो। मैं बोला मैं क्यों करूं। महाराज बोले तो भी करूं, आप कौन हो। बोला नहीं, लेकिन सोच रहा था। कंटिन्यूस 1 घंटा ऑर्डर ही दे रहे थे। फिर जाते जाते मेरे को बोले क्या करे, आदत लग गई ऑर्डर देने के, बीच बीच में हम भूल जाते हम रिटायर हो गए। तो इसलिए आदत की बात है। जीवन की वास्तविकता सफलता है या विफलता, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जीवन के अंत में वास्तविक सत्य है कि आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है और चाहे हम कितना भी प्रयास करें मृत्यु को ही आलिंगन करना पड़ता है। तो जीवन का अंतिम सत्य विफलता है, अर्थात हमारी इच्छा के विपरीत इस आत्मा को शरीर से उठा के फेंका जाता है। तो इसलिए अगर जीवन में केवल सफलता की आदत रही तो उतना ही अंतिम क्षणों में कष्ट होगा, वेदना होगी। इसलिए भौतिकवादी लोग निरंतर सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान वैष्णवगण जानते हैं जितनी विफलता की आदत लगे उतना अच्छा है, उतना प्रैक्टिस मिल रहा है अंतिम क्षण के लिए। तो इसलिए ये आदत की बात होती है कि जिस प्रकार की आदत होगी वैसे हम लोगों का रवैया भी बदलेगा। हाँ, एक बार राधानाथ महाराज हम लोग को लेके अपने अनिल अग्रवाल जी के ऑफिस में गए थे वेदांता, और अनिल अग्रवाल जी बहुत बड़े बिलियनर हैं, विश्व के बड़े बड़े बिलियनर में उनकी गिनती है। तो बता रहे थे, महाराज जी ये देखो ये आईआईटी वाला है, ये देखो ये एमबीए है, ये देखो ये पीएचडी किया है, ये देखो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है, ये सब यहां पर काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं यहां पर, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं। हा 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 हा। तो महाराज मुड़े, मैं खड़ा था, मुझे दिखा है, ये देखो आईआईटी है राधेश्याम प्रभु, ये देखो आईआईटी है ये, और मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं। हा 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 हा। फिर महाराज बोले लेकिन ये लोग मेरे लिए नहीं काम कर रहे, ये लोग कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, और मैं भी कृष्ण के लिए काम कर रहा हूं, और उनको देख के बोले आप भी कृष्ण के लिए काम करो। तो इसलिए इस जगत में सफलता लोगों को बहुत आकर्षित करती है, लेकिन विफल कोई नहीं होना चाहता। कोई एक स्टूडेंट आकर राधानाथ महाराज को बोले, महाराज आई गॉट फर्स्ट प्राइज, I got first rank. Maharaj ne kaha, oh very good. Last exam what you got? Last exam also I got first rank. Maharaj, uske pehle, before that also I got first rank. Maharaj said, oh, when you will get practice of getting last rank? That is also important. Otherwise you will be in illusion. तो इसलिए दक्ष प्रजापति की समस्या क्या थी? दक्ष मतलब एक्सपर्ट, और इसलिए सम्मान की इतनी आदत लग गई थी, जब हमेशा व्यक्ति फीस्ट ही खाता रहे तो फिर फास्टिंग की आदत नहीं रहती। तो इसलिए दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रवेश किए सब धड़ाम करके खड़े हो गए, तो दक्ष को लगा क्या बात है, और फिर चारों दिशाओं में घूमकर देख रहा था कि कौन नहीं उठा है। दो लोग नहीं उठे, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। ब्रह्मा जी को देखे, बोले कोई बात नहीं, ये तो बॉस है, कुछ नहीं कर सकते, पिताजी हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर शिव जी को देखे, बोले यार दामाद नहीं उठा, ये क्या चल रहा है कि नहीं। तो तीन प्रकार के जीव होते हैं, सुर असुर ससुर। तब ससुर दामाद का संबंध चल रहा है यहां पर, बेचारे शिवजी को कुछ पता नहीं, वो अपना आंख बंद करके ध्यान में है, उसको पता भी नहीं इनको क्या हो रहा है। और लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम यही होते हैं, जब एक पार्टी को मालूम ही नहीं कि दूसरे का प्रॉब्लम चल रहा है, उनको पूछो मालूम है क्या प्रॉब्लम, नहीं नहीं सब बढ़िया है। तो शिव जी को कोई उठा के बोले पता है क्या कोई डिस्टर्बड है, बोले कोई डिस्टर्ब नहीं, क्यों? क्योंकि मैं खुश हूं, क्योंकि शिव जी प्रसन्न है, उनको पता भी नहीं दक्ष के ऊपर क्या बीत रही है। और दक्ष ने देखा शिव जी नहीं उठे, दक्ष वहीं पर खड़ा होकर स्टार्ट हो गए, बोले आगे मैं जो भी बोलने वाला हूं द्वेष के कारण नहीं बोलने वाला, नोट करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये द्वेष का चिन्ह है, जब व्यक्ति के हृदय में द्वेष होता है सबसे पहले बोलता है मैं द्वेषी नहीं हूं, बुरा मत मानना। तो इस तरह आरंभ किया, गृहीत्वा मृग शावाक्ष पाणि मर्कट लोचना, कहते मैंने अपने मृग नयनी सती का पाणी ग्रहण करवाया, ये वानर के जैसे नेत्र रखने वाला शिवजी के साथ, और ये व्यक्ति भस्मीभूत होकर पता नहीं कहां भूत प्रेतों के बीच तांडव करता रहता है, ऐसे नालायक व्यक्ति के साथ मैंने क्यों इसका विवाह करवाया, और ऐसे विवाह का प्रस्ताव भी दिया। तो अब ब्रह्मा जी को देख के उसको गाली देने लगे, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब क्रोध की दावाग्नि उठने लगती है तो व्यक्ति हर प्रकार के संबंध को तिलांजलि देता है। तो इसलिए भौतिक जगत में हमारा सबसे बड़ा मित्र हमको लगता है कौन है? हमारा मिथ्या अहंकार। और उस मिथ्या अहंकार को प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि विश्व में, यूरोप में डाइवोर्स का स्टैटिस्टिक्स रेट चल रहा है अभी 72%, अमेरिका में चल रहा है 52%, इंडिया में अभी भी 14% पे आया है, और इंडिया में पहला डाइवोर्स चला वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ 100 साल पहले कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए जब संबंध स्थापित होता है तो दो लोगों के बीच संबंध हमेशा अलग अलग चुनौतियों से पूर्ण होगा, और जब तक मिथ्या अहंकार के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक संबंध बनाए नहीं रख सकते। तो दक्ष प्रजापति हर प्रकार के कार्य करने में दक्ष थे, लेकिन अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाए, और तब वो उच्च स्वर में चिल्लाने लगे, और तब शिवजी का पक्षपात करते हुए नंदी बैल उठकर उनका विरोध किए। नंदी की बात सुन के भृगुमुनि उठे, और भृगुमुनि उनको गालियां देने लगे, और देखते ही देखते चारों दिशाओं में गाली गलौच मचने लगा। शिवजी चुपचाप उठकर निकल गए। तो कई बार हम लोगों के भी जब इस्कॉन में इष्टा गोष्ठी होती है स्टार्ट होता है इष्टा गोष्ठी के साथ, अंत होता है मुष्टि गोष्ठी के साथ। तो इसलिए जब क्रोध व्यक्ति व्यक्त करने लगता है तो दूसरों के ऊपर उसका असर होता है। तो इसलिए राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, संघ में हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो दूसरों को किस दिशा में प्रेरणा देगा। अगर हम निरंतर आलोचना करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, दूसरों के आलोचना करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और उनका बैड डॉग बाहर आएगा। और अगर संघ में हम सहनशील होकर हम दैवी गुणों को प्रस्तुत करेंगे तो दूसरों को भी लगेगा चलो हम भी अपने ऐसी दैवी प्रवृत्तियों को बाहर लाएं। तो इसलिए भक्ति में हर भक्त का एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो कैसे दूसरों को प्रेरित करे। प्रभुपाद के शिष्य बुद्धिमंत प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में इतने उस्ताद, 2 घंटे में वो 50-100 भगवद गीता बांट देते थे, 1-to-1, ऐसा स्पॉन्सर लेके नहीं, 1-to-1। तो एयरपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 2 घंटे के बाद अचानक एक सज्जन उनके पास आए, बोले अपना बिजनेस कार्ड दिया, बोले मैं ये कंपनी का मालिक हूं, 2 घंटे से देख रहा हूं किसी को कुछ माल चाहिए नहीं, फिर भी जबरदस्ती गीता पकड़ा दिया तुमने, मैं अपने कंपनी के लिए मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट ढूंढ रहा हूं, मेरा कार्ड लो प्लीज ज्वाइन मी। ये बुद्धिमंत प्रभु देखे और उनको पूछे भगवत गीता है क्या आपके पास, वो बोला नहीं है पकड़ो। तो उसने सोचा अरे गीता नहीं लूंगा तो शायद ये बात आगे नहीं मानेगा, तो गीता खरीद लिया। तो इनका जो भी प्रस्ताव था बुद्धिमंत प्रभु का बिजनेस वही था, गीता बेचो। 1 हफ्ते के बाद इस व्यक्ति ने उनको फोन किया, अरे 1 हफ्ते पहले फोन किया था, क्या हुआ, सोचा क्या, ज्वाइन कर रहे हो क्या मुझे। बुद्धिमंत प्रभु बोले सोच रहा हूं लेकिन तुम्हारे पास भागवतम सेट है क्या। वो बोले नहीं है, भागवतम भी बेच डाला। फिर 1 हफ्ते बाद फिर फोन किया, बोले ज्वाइन कर रहे हो क्या यार, बार बार मैं पूछ रहा हूं। बोले भागवतम तो हो गया लेकिन एक चैतन्य चरितामृत भी ले लो फिर देखते, सारे किताब बेच डाले। फिर ये पूछा तुम फाइनली ज्वाइन करोगे कि नहीं, तो बोला देखो आपको लगता है हम लोग क्या बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है उसका प्रतिकार करना आदान प्रदान करना संभव नहीं, लेकिन हम इस ज्ञान को दूसरों में वितरित करके धीरे धीरे अपने हृदय के अंदर कृतज्ञता को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता कि भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अहंकार के ऊपर दमन और दूसरों में भगवत भक्ति का प्रचार ये कितना आवश्यक है। तो दक्ष प्रजापति और उनके सारे लोग मिलकर इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक दूसरे के नकारात्मक तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे, दे वर एनकरेजिंग द नेगेटिविटी विद इन ईच अदर। और इसीलिए कई कई इस्कॉन मंदिर में देखा हो जो उचित संस्कृति नहीं होने के कारण ध्वस्त हो गई है। और इसलिए राधानाथ महाराज इतने लेक्चर्स में बार बार बोलते रहते हैं त्रिणादपि सुनिचेन, और ये लेक्चरों के माध्यम से वो जो अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि गलत दिशा किसी ने पकड़ ली तो फिर उसको नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन है, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो यहां जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे क्रोधावेश में आकर, इसको नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन था। एक बार मेरा शूटिंग चल रहा था सूरत में, और हमारे जो उस समय डायरेक्टर थे हरिदास प्रभु ITV के, वो भी मतलब क्रोध में आ जाते तो पूछो मत। तो कैमरामैन ने कुछ तो गलती किया, अगला शॉट होने वाला था मेरा, उसके पहले वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे कैमरा वाले के ऊपर कि खटिया खड़ी कर दी उसकी। तो मैं वेट किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा। 10-15 मिनट वो गालियां दिए, उसके बाद फिर बोले चलो अभी स्टार्ट। फिर जैसे ही कैमरा रोलिंग एक्शन हुआ तो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया और बोला आज के लेक्चर का शीर्षक है क्रोध पे नियंत्रण। तो वो मुझे घूर घूर के देखने लगे, बोले यार ये क्या मुझे लेक्चर दे रहे क्या। और 15-20 मिनट के एपिसोड के बाद जब समाप्त हुआ तो मैंने कहा नहीं प्रभु, पहले से यही टॉपिक था, बाय चांस उसके पहले एग्जाम्पल दिख गया। तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। दक्ष प्रजापति बाकी कई तत्वों पर नियंत्रित कर पाए लेकिन अपने वेग के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पाए। तो इसलिए इन वेगों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। और तब सती के पास आकर शिवजी बैठते हैं और सती देखती हैं कि सारे देवतागण वाजपेय यज्ञ में जा रहे हैं, तो उनको देखकर उनके अंदर तुलनात्मक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सेंस ऑफ कंपैरिजन, और वो कहती है हम भी जाएंगे वहीं पर। शिव जी बोलते अरे मरोगे तुम जाओगे तो, क्योंकि तुम्हारा अपमान होगा, मत जाओ। बोलते नहीं नहीं हमको जाना है। क्यों? क्योंकि वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, इसलिए हम भी जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि जो कार्य दूसरा कोई कर सकता है इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा अंतर है आप कर सको और दूसरा कोई कर सके। और इस्कॉन में भी ये बहुत बड़ी समस्या है, भक्त लोग एक दूसरे को देखकर सोचते ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, हम भी करेंगे। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, उनको कीर्तन में बिल्कुल जीरो था, तो बेचारे प्रोग्राम में जाते थे तो एक ही प्रभुपाद धुन गा के आ जाते थे, और प्रभुपाद धुन गाते भी थे तो लगता था जप कर रहे, माइक पे जप हो रहा है। तो उनके कांग्रेगेशन ने निवेदन किया 4 साल से एक ही मंत्र बोल रहे हो एक ही ट्यून में, थोड़ा वैरायटी ला सकते हो क्या, एक नया ट्यून गा दो, हमने भी क्या पाप किया है ना, एक नया ट्यून गाने में क्या जाता है। तो गया मंदिर में, किसी को पूछा यार मेरे को एक नया ट्यून सिखा दे, कांग्रेगेशन डिमांड कर रहा है। तो उसको नया ट्यून सिखाया, और जिसको संगीत नहीं आता उसको लगता है मैं सीख गया हूं, उसके मन के अंदर ट्यून चलता है, वो मन से यहां नहीं उतरता। तो प्रोग्राम में गया, बैठा, करताल लिया, माइक चालू किया, वापस वही प्रभुपाद धुन। कांग्रेगेशन बोला यार तेरे को बोला था नया ट्यून, अरे बोला प्रयास तो किया लेकिन पता नहीं क्यों निकला ही नहीं। फिर वो मंदिर में जाके वो भक्त को बोला यार तुमको नया कुछ टेक्निक सिखाना पड़ेगा, मैं तो भूल गया, पूरा गायब हो गया ऊपर से। तो फिर वो नया ट्यून सिखाया, उसने बोला देख प्रोग्राम तुम्हारा 7:30 बजे होता है, 6 बजे ट्यून सिखाऊंगा, जैसे ही ट्यून सिखाऊंगा 6:15 तक ट्यून सीखना, उसके बाद 6:15 से गाते हुए जाना प्रोग्राम में। बंद करोगे तो प्रॉब्लम है, बंद मत करो तो भूलोगे नहीं। बोले यार आइडिया जोरदार है। वो गाते हुए गया, ग्रैंड रोड स्टेशन में टिकट खरीद रहा है गाते हुए, ट्रेन में जा रहा है धक्के खाते हुए गाते हुए, लोग सोच रहे कितना खुश है। गाते गाते प्रोग्राम में गया, ऑल्टर के सामने दंडवत किया, नम ओम विष्णु पादाय करके बोला, उठा तो वापस गायब। वो बोला यार बस हो गया, अभी आगे अपने को नहीं गाना कभी। तो इसलिए सती को शांति से वो बैठ सकती थी लेकिन देख रहे वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, चलो हम भी जाएंगे। शिव जी बोले मत जाओ, भला नहीं है आपका इसमें। बोले नहीं नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि सती कहती है मैं वो सारे आभूषण पहन के जाऊंगी जो हमारे पिता ने हमको विवाह के समय दिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं विवाह के बाद भी भले शिव जी भस्मीभूत लगाकर और सभी बड़े बड़े जो भूत पिशाच के बीच में बैठ के भजन करते हुए, शिवजी ने सती के सोने के सारे जितने उनके ऑर्नामेंट्स थे उसको बेचा नहीं था। उनके सोने के जितने अलग अलग हीरे जवाहरात मोती के जितने उनके पिताजी ने दिए थे, स्वर्ण के अलंकार बेचकर गांजा नहीं फूंक रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं हम शिवजी का पालन करेंगे और फिर सब कुछ गहना बेच बेच के गांजा फूंकते रहते। शिवजी ने ऐसा नहीं किया, वो गहने यथावत थे अभी भी। और तब जाकर शिवजी के बारंबार उनको चेतावनी देने पर भी वो नहीं मानी। और फिर जब सती अपने पिता के घर पहुंचती है, उनकी मां और बहनें उनका स्वागत करती हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति उनकी उपेक्षा करते हैं। तो सती का एक नाम था दाक्षायणी, क्योंकि सभी कन्याओं में सबसे प्रिय दक्ष की सती थी। तो इसलिए जितना निकट का संबंध होता है उतनी अधिक संभावनाएं होती हैं विनाश की और कष्ट की। तो हर संबंध के अंदर असीमित सुख का बीज है और असीमित क्लेश का भी संभावना है। इसलिए जब भी हम संबंध स्थापित करें, समझना चाहिए, जब अर्जुन कृष्ण को कह रहे थे प्रभो मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, मैं युद्ध भूमि में अहिंसा पालन करूंगा, कृष्ण ने कहा क्या अहिंसा की बात करते हो मूर्ख, घर घर के अंदर हिंसा चल रही है, दो लोगों के बीच संबंध है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास जब करते हैं वो हिंसा नहीं तो क्या है। दो लोगों के बीच संबंध जगत में कहीं पर भी है, चाहे वो मित्र हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, स्वामी सेवक हो, हर संबंध के अंदर गोले बारूद चल रहे हैं, तलवार चल रहा है, हिंसा की घटनाएं चल रही हैं। हिंसा का अर्थ केवल अस्त्र शस्त्र नहीं, हिंसा अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के इच्छाओं के विरोध में उसके साथ व्यवहार करे। इच्छा न होते हुए व्यक्ति चुपचाप सहन करता चला जाए, ये हिंसा के चिन्ह है। तो इसलिए यहां पर वर्णन आया है कि दक्ष और सती के बीच जो पिता पुत्री का संबंध था वो इस स्तर पर था, लेकिन दक्ष का अपने अहंकार से जो प्रेम था वो यहां था। तो हर व्यक्ति को अपना अहंकार इतना प्यारा है कि उस अहंकार को कोई चोट लगा दे तो वह व्यक्ति बाकी हर प्रकार के संबंधों को विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है, ये भागवत वर्णन कर रहा है। तो अगर कोई कहे भौतिक स्तर पर कि आप मेरे लिए सबसे प्रिय हो, वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है, क्योंकि भौतिक स्तर पर हर व्यक्ति का सबसे प्यारा निकट का प्रेमी उसका अहंकार है, मैं और मेरा, ये हर व्यक्ति का सबसे निकट का सुहृद और प्रेमी है, बाकी सब संबंध उसके बाद आए। और इसलिए अहंकार का नाश करने के बाद जब दास बनकर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तब ब्रजवासियों का उदाहरण देख के समझना चाहिए कि अहंकार शून्य अस्तित्व क्या होता है। तो इसलिए अहंकार युक्त भौतिक स्तर पर अहंकार ही केंद्र बनता है। और इसलिए यहां दक्ष प्रजापति ने एक समय जो उनके सबसे निकटतम पुत्री थी सती, उसके सामने आने पर भी उसकी उपेक्षा कर दी। और सती को इतना बड़ा धक्का लगा, सदमा लगा कि जो पिता मुझसे इतना प्रेम करते थे आज क्या हुआ, उन्होंने अपना मुख क्यों मोड़ लिया, क्यों मेरा इस तरह अपमान हो रहा है, वो समझ नहीं पाई। और इतना धक्का खाई कि उसने निश्चय किया कि न केवल उन्होंने मेरी उपेक्षा की, मेरा अपमान किया, लेकिन साथ साथ इस यज्ञ में बाकी सभी देवताओं को अलग अलग प्रकार से आहुति दी जा रही है, लेकिन शिवजी को आहुति नहीं दी जा रही। कितना घोर अन्याय है, घोर अपमान है। तो उन्होंने तत्पर निश्चय कर लिया कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, और सती वहीं पर अपने आप को प्रज्वलित कर दी। शिवजी को समाचार मिला, क्रोधावेश में आकर शिवजी ने एक बाल नीचे फेंका, उसमें से एक विकराल वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर गए और उसी यज्ञ के मंडप में दहशत मचा दी, विनाश कर दिया। सारे यहां वहां भागने लगे और भृगुमुनि वहां भाग रहे थे, उनका दांत तोड़ डाला और मूंछ निकाल के फेंक दिया, और दक्ष प्रजापति को पकड़कर दक्ष के सर को काट डाला। और इस प्रकार सारे लौट के आए और सारे देवता भ्रमित थे कि अब करें तो क्या करें। तो ब्रह्मा जी को लेकर सभी देवतागण गए और बोलने लगे शिव जी से, प्रभो यज्ञ आरंभ किया था, अब यज्ञ को बिना समाप्त किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, और यज्ञ के मुख्य यजमान दक्ष प्रजापति, उनका ही सर्जरी हो गया, अब वो ही नहीं बचे तो आगे क्या करेंगे, तो कृपा करके उनको पुनर्जीवित कीजिए। और तब जाकर शिवजी आकर उनको एक बकरे का सर दे दिए। बकरे का सर डालने पर वो बकरे के मुख से उन्होंने स्तुतियां की, और तत्पश्चात इस बात को सिद्ध किया कि वास्तव में चाहे व्यक्ति कितना शक्तिशाली क्यों न हो, अगर अहंकार के वशीभूत आएगा, तमोगुण के वशीभूत आएगा, तो तमोगुण में की गई भक्ति दूसरे वैष्णवों को अपमान कर, निंदा कर, आलोचना करके विनाश निश्चित है। तो इसलिए वैष्णव संघ में जब आप किसी के मुख से वैष्णव निंदा सुनोगे, आलोचना सुनोगे, उस व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति भूल गया है कि वो सत्संग में क्यों आया है, और ऐसे व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देना बड़ा आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन का प्रचार करते करते भारत में आए, जयपुर में कुछ लोग आकर प्रभुपाद को आलोचना करने लगे। कौशल्या देवी करके प्रभुपाद की शिष्या थी, जयपुर में इतना बढ़िया प्रोग्राम अरेंज कर रही थी प्रभुपाद के लिए, लेकिन वहां पे कुछ लाइफ मेंबर लोग प्रभुपाद को बोलने लगे, अरे आपके अमेरिकन शिष्य लोग बस हरे राम हरे कृष्ण गाते रहते हैं, बाकी इनका कोई शास्त्र वास्त्र में कोई ज्ञान नहीं। प्रभुपाद ने कहा, क्या बात करते हो, ये यहां पर देखो ये महिला है, कितनी बड़ी पंडित है, सारा शास्त्र जानती है, पूरा उपनिषद जानती है, कौशल्या बताओ उपनिषद सुनाओ। अब वो माताजी को केवल ईशो उपनिषद का 5 श्लोक मालूम था, और प्रभुपाद बोले पूरा उपनिषद सुनाओ, तो वो घबरा गई, बोले अभी क्या करें, और सब लोग वेट कर रहे हैं सुनते हुए। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, 5वां श्लोक जब तक आई उसका हृदय धक धक कर रहा था। जैसे ही 5वां श्लोक सुना है, प्रभुपाद ने कहा, बस इसका मतलब तुमको सब पता है। तो फिर वो मेंबर जो आलोचना कर रहे थे, वो प्रभुपाद को देख के बोले, स्वामी जी श्लोक तो सुनाया लेकिन इनका संस्कृत का प्रोनंसिएशन गड़बड़ था। प्रभुपाद ने कहा, लेकिन इनका रिनंसिएशन कितना जोरदार है। सब कुछ छोड़कर भारत में आए हैं, प्रचार कार्य में लगे हैं, ये कितना महान कार्य है। तो इसलिए कोई भी सकारात्मक कार्य करना बड़ा कठिन है, आलोचना करना बहुत आसान है। एक हमारा ब्रह्मचारी दिसंबर मैराथन में बुक बांट रहा था, एक आदमी अचानक चिल्लाने लगा, अरे तुम क्या ब्रह्मचारी लोग वे सैफ्रन पहनकर बांटते रहते हो, डिस्टर्ब करते रहते हो, अरे इतने साल से मैं देख रहा हूं तुम लोग आके वितरण करते हो, एक भी विवेकानंद पैदा किया क्या तुम लोगों ने, चिल्लाया हो। वो बोला सर हम ब्रह्मचारी हम पैदा नहीं करते। वो घबरा गया बेचारा, चुपचाप हो गया। तो सामने से आलोचना करने वालों की संख्या बहुत लंबी होगी। तो इसलिए इस कथा में यह बताया है, जिस प्रकार शिवजी महादेव हैं, ये भौतिक जगत इस तरह बनाया गया है, भगवान कहते हैं कि मेरे अवतारों में से विनाश के डिपार्टमेंट के इंचार्ज, जो साक्षात घनीभूत तमोगुण जिनके अंदर स्थित है, जो अपना तीसरा नेत्र खोले तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भी गाली खाना पड़ता है, वो भी जबरदस्त मार्केट में सबके सामने। तो इसलिए अगर आपको इस भौतिक जगत में रहकर भक्ति करनी हो, भक्तों के संग में भक्ति करनी हो, तो दो बातों की आदत डालनी पड़ेगी, प्रसाद खाने की और गुस्से को पीने की। खाना पीना साथ में चलेगा। क्या खाना है? प्रसाद। क्या पीना है? बस प्रसाद खाओ और गुस्से को पीते रहो, तब जाकर सेवा करने की शक्ति मिलेगी। जब क्रोधावेश में आकर अनियंत्रित हो जाए, ऐसा व्यक्ति लंबे समय का सेवा नहीं कर पाएगा। अगर लंबे समय तक सेवा करना हो तो वेगों के ऊपर नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। 10 गाली सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आगे वर्णन आया है कि अलग अलग किस प्रकार अधर्म का परिवार है, और अधर्म के परिवार के वर्णन के पश्चात स्वयंभू मनु का और अधर्म वर्णन आया है। स्वयंभू मनु के परिवार में आगे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, सुरुचि और सुनीति ये दो उनकी पत्नियां। एक दिन की बात है, उत्तानपाद महाराज के गोद पर सुरुचि के पुत्र उत्तम बैठे थे, उसको देखकर ध्रुव के मन में इच्छा हुई, बैठने की इच्छा किए, और जब बैठने का प्रयास करते हैं तो सुरुचि ऊपर से चिल्लाती है कि जब तक मेरे कुक्षी से जन्म नहीं लोगे, आप ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं कर सकते अपने पिता के गोद पे बैठने की। भर्त्सना कर देती है, आलोचना करती है, कहती है कि अपने इस शरीर को छोड़कर भविष्य में मेरे गर्भ से जन्म लो, तब देखेंगे। ऐसे भयावह भर्त्सना सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के हृदय में इतनी क्रोधाग्नि दहकने लगती है। तो जैसे विषधर भुजंग के मस्तक पर कोई पैर चाप दे तो फुफकार मारता हुआ डंक मारने लपकता है, वैसे ध्रुव महाराज भागते हुए अपनी माता के पास गए। क्रोध था उनको सुरुचि के ऊपर, और क्रोध था उनको महाराज उत्तानपाद के ऊपर भी। तो कभी कभी आपको लगेगा अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, उत्तानपाद चुप बैठ के फंसे। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज के मन में क्रोध था कि जब मां ने गाली दिया तब तुम चुप क्यों बैठे थे। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज 5 वर्ष के आयु में एक आलीशान ऐश्वर्यशाली राजमहल में राजसी वैभव के बीचों बीच राजसी पोशाक वस्त्र अलंकार धारण करते हुए सोने हीरे मोती से लदालद शरीर को लेकर हर प्रकार के सुस्वादु व्यंजन घी में पके हुए खाते हुए, सोने की थाली में खाते हुए, ऐसे ऐश्वर्यशाली अवस्था में रहते हुए उस क्षण ब्रह्मांड के सबसे परेशान क्लेश पीड़ित व्यक्ति थे। तो इसलिए कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए कि केवल ऐश्वर्य प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। मैं हमेशा स्टोरी बोलता हूं, एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति मेरे पास आकर बोलने लगे, अरे मेरे पास तो इतना धन है, इतना धन है जैसे सागर का जल। लेकिन जैसे सागर का जल खारा है, नमकीन है, वैसे कितना भी धन कमाऊं मेरी प्यास नहीं बुझती। लेकिन गौरांग प्रभु, मैं देखता हूं कि आप सभी लोग हरे कृष्णा वाले भक्ति कर रहे हो, आपके हृदय में शीतल जल है कुएं का, भक्ति का। कृपा करके आप मुझे अपने कुएं का दो बूंद जल दे दीजिए। मैंने कहा कुएं का दो बूंद अवश्य ले लीजिए, आप सागर का दो बूंद हमको दे दीजिए। इतना बोला कि नहीं हुआ, वहां से गायब और 6 महीने तक दिखे ही नहीं। बिल्कुल घबरा गए, उनको लगा कि हम लूटपाटी मचा देंगे। तो इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे कितना ऐश्वर्य है, कितना धन है, कितनी व्यवस्था है, लेकिन भागवत इस बात को वर्णन कर रहा है कि इस भौतिक जगत में सुख और दुख की परिस्थिति बड़ी सापेक्ष है। सापेक्ष अर्थात रिलेटिव। तो ध्रुव महाराज के पास आधुनिक भाषा में कहा जाए तो सब कुछ था, लेकिन उसको उस क्षण पूछा जाए क्या तेरे पास सब कुछ है, वो कहता मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उसके इच्छा को किसी ने बड़े ही विकराल रूप से दमन कर दिया। तो इसलिए हमारी इच्छा शक्ति सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और सत्संग में हम लोग आते हैं उस इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, और उस इच्छा शक्ति को किस प्रकार हम सकारात्मक रूप से प्रयोग करें। तमेव वृत्सास्य भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। ध्रुव महाराज को उसकी मां सुनीति कहती है बेटा तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, प्रभो मेरे बेटे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, वो ही आपके हृदय की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बड़े बड़े मुमुक्षुगण उनका आश्रय लिए हैं, आप भी जाओगे अवश्य सिद्ध हो जाओगे। मैं तो माता हूं, आपके रोते हुए आंसू से लदे हुए मुखमंडल को देखकर मैं भी 2-4 आंसू बहा दूंगी, लेकिन क्या आपकी समस्या का समाधान होगा? आपकी समस्या का समाधान चाहिए, भगवान के पास जाइए। श्री कृष्ण का हृदय करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि माताओं के हृदय के वात्सल्य भाव से युक्त है। केवल कृष्ण ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप जाइए भगवान श्री कृष्ण के पास, और इस तरह कहकर सुनीति ध्रुव को जंगल में वन में भेजती है। वन में आ जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि उनको बहुत परीक्षा लेते हैं, बड़ा सुंदर वार्तालाप है, और उस वार्तालाप में नारद मुनि कहते हैं कि देखिए चाहे व्यक्ति के कितने ही अवगुण क्यों ना हो, लेकिन जो कुछ भी होता है पूर्व कर्मानुसार होता है, तो दैववश जो हुआ सो हुआ, अभी आप सहन करो। गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधवात मैत्रीम समानात अन्विच्छे नतापर अभिभूयते। कि हर व्यक्ति को चाहिए अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति का सम्मान करे, समान गुण वालों के साथ आनंद ले, और जो अपने से कम गुण वाले हैं उनके ऊपर करुणा व्यक्त करें। इस बात को सुनकर ध्रुव महाराज कहते हैं क्या सुंदर लेक्चर दिया नारद मुनि, ब्राह्मणों के लिए बेस्ट लेक्चर है, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए नहीं चलेगा, नहीं मानूंगा, मेरे मन में केवल एक ही बात है प्रतिकार, रिवेंज, और मुझे चाहिए कि मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करूं, और यदि आप त्रिभुवन हाँ उत्कृष्टम जिगीशो साधु वर्तम में पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीशो साधु वर्तम में, मुझे चाहिए ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद, दे सकते हो तो बात करो, बाकी मुझे यहां पर फिलॉसफी नहीं सुनना है। साधु वर्तम में उसके लिए मैं अधिकृत उचित मार्ग पालन करने के लिए तैयार हूं। तो ध्रुव महाराज की बात सुनकर नारद मुनि भी विस्मित हो जाते, यार 5 वर्ष की आयु में क्या महत्वाकांक्षा है देखो तो। तीसरे ध्रुव महाराज की कथा से क्या समझनी चाहिए कि चाहे हमारे अंदर कितने भी अनर्थ हो, कितने ही विपरीत दुर्गुण अवगुण क्यों ना हो, लेकिन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा अगर तीव्र हो तो उस तीव्र इच्छा के आधारशिला पर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव महाराज के अंदर रजोगुण का प्रादुर्भाव अवश्य था, लेकिन अब क्योंकि ध्रुव महाराज को नारद मुनि जैसे गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ, वो अपने रजोगुण को सुनियोजित करने के लिए तैयार थे। और तब नारद मुनि उनको कहते हैं, आपके इस तीव्र इच्छा को देखकर मैं प्रभावित हो गया, तो इसलिए मैं आपको मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेण आनेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयीं बुधा सपर्याम विधेर द्रव्ये देश काल विभागवित। इस मंत्र का जप कीजिए और देश काल पात्र के अनुसार जो भी वस्तु उपलब्ध हो उससे यहां भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा पूजा कीजिए। और फिर ध्रुव महाराज नारद मुनि के बताए गए मार्ग के अनुसार तपस्या करने लगे। पहले महीने में कुछ दिनों में भोजन कर रहे, कुछ फल कपित फल खा रहे थे, फिर कुछ दिनों में जल पीने लगे, फिर वायु श्वास लेने लगे, फिर अंतिम महीने में श्वास लेना भी बंद कर दिए, तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास वायु प्राण वायु स्थगित हो गई। 33 कोटि देवतागण कंपित हो गए, भ्रमित हो गए, भागे भागे भगवान के पास जाकर आर्तनाद करने लगे, प्रभो पता नहीं क्या हुआ, ऐसी आपातकालीन परिस्थिति कहां से आन पड़ी, हमको लगा वायुदेव इसके पीछे हैं। वायुदेव कहते मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, अगर मेरा स्मरण करता हुआ कोई व्यक्ति, 5 वर्ष का बालक भी जिसके हृदय में मेरे विषय में तीव्र स्मरण हो, वास्तविक प्रभाव कार्यकलापों से शक्तियों से पूर्व जन्म के जनित कर्मों से नहीं, वास्तविक प्रभाव श्री कृष्ण के स्मरण से, श्री कृष्ण के संतोष से होता है। 5 वर्ष का बालक एक स्थान पर खड़ा होकर कृष्ण का ऐसा तीव्र स्मरण कर रहा था कि उस स्मरण के प्रभाव से ब्रह्मांड का कोना कोना हिल गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्यूरिटी इज द फोर्स। इसलिए सुबह उठकर जब हरिनाम हम जपते हो, उसके शक्ति को कोई कम मत समझो। अगर आपको कोई प्रभावशाली परिवर्तन अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में और इस्कॉन के मूवमेंट में और समाज में लाना हो, तो वो शक्तिशाली भगवत भजन के आधारशिला पर ही सिद्ध हो सकता है। 1977 में जब प्रभुपाद जी लीला समाप्त किए, उस समय 99% इस्कॉन मंदिरों के अंदर रहता था, 99% इस्कॉन मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करता था। 2018 में 99% इस्कॉन मंदिर के बाहर रहता है, घरों में रहता है, 0.1% इस्कॉन मंदिरों के अंदर रहता है। बीटीजी मैगजीन में जो एड्रेसेस हैं इस्कॉन मंदिरों के, वो बिल्डिंगों के अंदर नंबर गिनोगे तो वो इस्कॉन का 0.1% पॉपुलेशन है, क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों के अंदर आजकल बहुत कम लोग रहते हैं और 99.9% लोग बाहर घरों में रह रहे हैं। और इसलिए भजन की तीव्रता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए पिछले 40 वर्षों में इस्कॉन के प्रॉपर्टी में वृद्धि हुई, जो लोग जुड़े हैं उनमें वृद्धि हुई, धन में वृद्धि हुई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वृद्धि हुई, लेकिन क्या हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बड़ी है क्या? इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। नंबर्स अवश्य बड़े हैं, लेकिन जो नंबर्स बड़े हैं वो क्या प्रभुपाद के दिए गए प्रोग्राम को उतनी ही तीव्रता के साथ अपने जीवन में अवलंबन करके अपना पा रहे हैं कि नहीं, ये चर्चा का विषय है। तो इसलिए ध्रुव महाराज एक स्थान पर खड़े होकर ब्रह्मांड को हिला डाले अपने आध्यात्मिक दिव्य शक्ति, तेजस्वी और ओजस्वी साधना और भजन के आधार पर और अपनी तीव्रता के आधार पर। तब जाकर सारे देवतागण जब भगवान से प्रार्थना किए, भगवान आके बोले चिंता मत करो, मैं उनको भी दर्शन देने जा रहा हूं। तब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान को देखकर यहां ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। तो ध्रुव महाराज की दूसरी प्रार्थना हम लोग बोलेंगे। भक्तिम मोह प्रबहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम येनोंजसोल्बनमुरु भगवत भवब्धिम नेश्ये भवत गुणकथामृतपानमत्ता। भगवान उनके सामने आ गए। अब आपको लगेगा जिसके सामने भगवान आ गए उनको और क्या चाहिए। ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे वैष्णव सत्संग चाहिए। क्यों? उस वैष्णव सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के कथा और कीर्तन का जो निरंतर वेगवती सरिता चलेगी उसको श्रवण करके मैं शुद्ध होना चाहता हूं। तब भगवान ध्रुव महाराज को कहते हैं आपको हजारों वर्षों तक साम्राज्य पालन करने की शक्ति मैं देता हूं, आप जाओ। जाने के पश्चात उनकी दोनों रानियां आकर ध्रुव महाराज को आलिंगन करती हैं और तब उस श्लोक में वर्णन आया है कि जिस प्रकार जल ऊपर से नीचे की ओर चलता है वैसे वैष्णवों के गुणों को देखकर जो भी उनसे घृणा करते हैं उनके वैष्णव गुणों को देखकर उनसे प्रेम करने लगते हैं। और तब उत्तानपाद महाराज सेवानिवृत्त होकर ध्रुव महाराज के विवाह करवाते हैं और तब उत्तम जाकर जब यक्षों के राज्य में जाते हैं उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनकी मृत्यु होती है, ध्रुव महाराज के अंदर क्रोध की दावाग्नि बढ़ने लगती है। तो वैष्णव का अपना एक फ्लेवर होता है। कभी हमको सोचना नहीं चाहिए कि जो बिल्कुल शांत रहे वही वैष्णव है। भगवत भक्ति और भगवत दर्शन प्राप्त होने के बाद भी ध्रुव महाराज रिमेंड एंग्री यंग मैन। तो उनका एक नेचर था क्रोधावेश में आकर कुछ करने का। वो अब उत्तम के देहांत के पश्चात वो यक्षों के ऊपर निकाले तब मनु और कुबेर उनके सामने आके प्रार्थना करने लगे, अरे भैया एक यक्ष ने कुछ किया उसके बदले सारे यक्षों को उजाड़ दोगे क्या, ठंडा हो जाओ। और इसलिए ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन कर लिए। भागवत इस सिद्धांत को ध्वनित कर रहा है चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो जाए वो मनमानी नहीं कर सकता। और इस जगत में हर व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति दिया गया है। तो इसलिए ध्रुव महाराज को मनु और कुबेर ने शांत किया और तब ध्रुव महाराज सेवानिवृत्त हुए और हिमालय गए। और वहां जाने पर उनको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया। वैकुंठ से विमान आया ऋषि मुनियों के बीच ध्रुव महाराज को लेने के लिए। तब ध्रुव महाराज की प्रतिक्रिया क्या थी, सब डिवोटीज को देखकर, सब ऋषि मुनियों को देखकर ध्रुव महाराज बोले, नहीं चलो मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं आया, मेरे लिए आया है, लगे रहो यहां पर बर्फ खाते रहो, मैं जा रहा हूं। ध्रुव महाराज सबसे पहले सभी को प्रणाम किए, सभी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के पश्चात फिर वैकुंठ के विमान में जो नंद सुनंद आए थे उनका आशीर्वाद लेकर फिर मृत्यु के सर पर पैर रखते हुए वो वैकुंठ विमान में प्रवेश किए। और तब ध्रुव महाराज जाते जाते देखे कि एक दूसरे विमान में उनकी माता को पहले से ही लेके जा रहे थे। और तत्पश्चात प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज की माता ने ध्रुव महाराज को सही दिशा दिखाया, इसके कारण उनकी सदगति हुई। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर योग्यता नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे कोई भविष्य में सुयोग्य शिष्य अपने भगवत भक्ति के प्रचंड शक्ति से मेरे उद्धार का कारण बनेंगे। ये प्रभुपाद जी की नम्रता है। इसलिए प्रचार हमें इसलिए करना चाहिए कि प्रचार करते करते हो सकता है हम किसी ऐसे शक्तिशाली भक्त को जोड़ दें वैष्णव समाज में, समुदाय में, जो इतना महान भक्त या संत बने कि उसके शक्ति से हम लोगों का भी उद्धार हो जाए। इस प्रकार यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज के लीलाओं का गुणगान करते हैं और तत्पश्चात यहां पर ध्रुव महाराज के आगे के डिसेंडेंट्स का वर्णन आता है, अंग और वेण इत्यादि का।